بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. پیش خدمت ہے ابن صفی کی جاسوسی دنیا، ناول نمبر 59، جہنم کا شعلہ، تحریر ابن صفی اور پیشکش قرطبہ آڈیو لائبریری. یہ ناول 4 سلسلوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 پہلا شعلہ، نمبر 2 دوسرا شعلہ، نمبر 3 تیسرا شعلہ اور نمبر 4 جہنم کا شعلہ. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں ناول جہنم کا شعلہ پارٹ 1،
جلد نمبر 18، ابن صفی کا ناول جاسوسی دنیا، نمبر 59، جہنم کا شعلہ، چوتھا حصہ، جہنم میں جاؤ. ان پر کچھ اس قسم کا سکوت طاری تھا جیسے وہ کسی ایسی لاش کے گرد کھڑے ہوں جسے قبرستان لے جانے سے پہلے آخری دیدار کے لیے رکھا گیا ہو. ڈاکٹر سلمان بار بار اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیتا تھا. نہ اس کے چہرے پر جنجلاہٹ کے آثار تھے اور نہ صدمے کے، البتہ پیشانی کی لکیریں گہری تشویش کا اظہار کر رہی تھیں. وہ دفتن ہاتھ اٹھا کر بولا، یہ معاملہ یہیں ختم کیا جاتا ہے. سب خاموش کھڑے رہے. تتاریہ نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ ہلائے لیکن پھر خاموش ہی رہ گئی. ڈاکٹر سلمان کے دوسرے اشارے پر مجمع برخاست ہو گیا. 5 منٹ کے اندر ہی اندر کمرے میں 3 نفوس کے علاوہ اور کوئی نہیں رہ گیا. یہ ڈاکٹر سلمان، حمید اور تتاریہ تھے. ڈاکٹر سلمان غور سے حمید کی طرف دیکھ رہا تھا. اچانک اس نے کہا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں، حمید کے انداز میں ہچکچاہٹ تھی، شبے میں مبتلا ہو گیا ہوں. اظہار کر دیجیے اپنے شبے کا. حمید ستاریہ کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گیا. خیر، پھر دیکھیں گے. ڈاکٹر سلمان نے جیب سے سگریٹ کیس نکال کر اسے کھولتے ہوئے کہا، لیکن کافی دیر تک سگریٹ اس کی انگلیوں میں دبی رہی. شاید اسے یاد ہی نہیں تھا کہ سگریٹ اس کی انگلیوں میں دبی ہوئی ہے. تتاریہ، میں پیاسا ہوں، اس نے تتاریہ کی طرف دیکھ کر کہا، اور میں یوں ہی خامخا کھڑی ہوئی ہوں، آخر ہم بیٹھتے کیوں نہیں؟ او ہاں، ڈاکٹر سلمان نے اس لاش کی طرف دیکھا جو اوپر کی کھڑکی سے گری تھی. پھر دفتر چونک کر بولا، او مگر اس کے پاس پش فائر موجود نہیں ہے، شارٹی نے اسے سنبھال لیا ہوگا. تتاریہ نے لاپرواہی سے کہا، تم کریک ہو، 100% کریک. ڈاکٹر سلمان ستاریہ کو گھورتا ہوا بولا، کس نے کہا تھا تم سے کہ پش فائر استعمال کیا جائے؟ ارے ختم بھی کرو، ستاریہ ہاتھ ہلا کر بولی، تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کوئلے کا مجسمہ دوبارہ چھلانگ لگا کر کھڑکی کے باہر کیسے جا سکتا تھا؟ گفتگو کیسے کی تھی اس نے؟ چلو یہاں کب تک کھڑے رہیں گے؟ حمید کو ان دونوں کی گفتگو عجیب لگ رہی تھی کیونکہ ان کے سامنے ایک لاش بھی موجود تھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں اس کی ذرا برابر بھی پرواہ نہ ہو. ستاریہ انہیں ایک ایسے کمرے میں لائی جہاں میز پر سوڈے کا ایک بڑا سائفن رکھا ہوا تھا، چند گلاس تھے اور 3-4 شیمپین کی بوتلیں. اس نے کمرے میں پہنچتے ہی 2 گلاس میں شراب انڈیلی اور تیسرے میں انڈیلنے جا رہی تھی کہ حمید ہاتھ اٹھا کر بولا، میں نہیں پیتا، تمہیں جاننا ہی چاہیے. ڈاکٹر سلمان مسکرایا، کیوں جاننا چاہیے؟ تتاریہ چونک کر حمید کو گھورنے لگی، تم سہیل کو نہیں جانتی. ڈاکٹر سلمان مسکراتا رہا، ان کے آ جانے سے ہمارے ہاتھ بہت مضبوط ہو گئے ہیں. پہلے یہ کہاں تھے؟ رام گڑھ میں تھے. اور بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا. ملکہ کائنات کو علم ہوگا کہ یہ اس سے پہلے کہاں تھے. تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے کزن ہیں. ہاں، میں نے غلط نہیں کہا تھا. اور آج سے 2 دن پہلے بھی مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بھی ہم میں سے ایک ہیں. حمید کچھ نہ بولا لیکن اس کے چہرے پر ایک بار حیرت کے آثار ضرور نظر آئے تھے. لیکن پھر اس نے اپنی حالت پر قابو پانے میں دیر نہیں لگائی تھی. حالانکہ یہ سب کچھ 100% دکھاوا تھا، اسے ان کی گفتگو سے قطعی حیرت نہیں تھی، مگر وہ ڈاکٹر سلمان کی پوزیشن کے مطلب ضرور الجھن میں پڑ گیا تھا. خیر، تتاریہ کچھ دیر بعد بولی، میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتی. یہ تھریسیا بمبل بی ہے کیا بلا؟ تھریسیا بمبل بی ایک خطرناک بہمین عورت جس نے پورے فرانس کو ہلا کر پھینک دیا تھا. شروع میں اس کی حیثیت ایک بدماش کی سی تھی. یہ اور اس کا ساتھی الفاظ سے ڈاکے ڈالتے تھے. پھر آہستہ آہستہ ان دونوں نے ایک طاقتور گروہ بنا لیا. پھر دوسری جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے ہی تھریسیا اور الفانسے کو ایک موقع پر جرمنی کی طرف بھاگنا پڑا اور وہاں انہیں نازی سیکرٹ سروس میں جگہ مل گئی. پھر انہیں دوبارہ فرانس آنا پڑا، لیکن اب حیثیت دوسری تھی. اب وہ ڈاکے نہیں ڈالتے تھے بلکہ فرانس کے فوجی راز جرمنی پہنچانے کے لیے کام کر رہے تھے. اور یہ حقیقت ہے کہ فرانس میں یہ جرمن سیکرٹ سروس کے سرگنا تھے. فرانس پر جرمن کی فتح کے بعد انہیں کہیں اور بھیجا جا رہا تھا، مگر اس جہاز کو جس پر یہ تھے اتحادیوں نے ڈبو دیا. تب تو پھر یہ تھریسیا فراڈ ہے، تتاریہ نے کہا. हो सकता है, मगर यह भी मुमकिन है कि दोनों इस जहाज पर ना रहे हों। तुम्हें शायद नशा हो गया है, ततारिया ने आंखें बंद करके कहका लगाया। खुद ही कहते हो कि वो जहाज में थे और जहाज डूब गया था, और खुद ही कहते हो कि मैं दोनों बातें अपनी मालूमात की बिना पर कह रहा हूँ। जिन लोगों का दावा है कि उन्होंने थ्रीसिया और अल्फासे का जहाज डुबो दिया था, वही आज भी इनकी तलाश में है। वो ये भी कहते हैं कि वो दोनों इसी जहाज पर थे और उन्ही लोगों को इनकी तलाश भी है, यानी वो खुद भी कोई वाजिब बात नहीं कह सकते, ततारिया ने कहा। यकीनन, डॉक्टर सलमान सर हिलाकर बोला और अपना पाइप सुलगाने लगा। कुछ देर के लिए फिर कमरे पर खामोशी मुसलत हो गई। हमीद इस दौरान में खामोश ही रहा था। वो खामखा दखल अंदाज भी नहीं होना चाहता था, उसे तो अब सोच समझकर काम करना था। मामलात काफी आगे बढ़ चुके थे। यहाँ इसकी मौजूदगी में इस खुली हुई गुफ्तगू का यही मतलब हो सकता था कि डॉक्टर सलमान इस पर एतमाद करने लगा है। तारिया ने अपने लिए एक गिलास तैयार किया। डॉक्टर सलमान के हाथ में चौथा गिलास था। हमीद को ये देखकर हैरत हुई कि ना तो इसकी गुफ्तगू से अंदाजा होता था कि वो पी रहा है और न आंखें ये जाहिर करती थी। चौथा गिलास खत्म करके इसने रुमाल से होंठ खुश्क किए और ततारिया की तरफ देखने लगा। फिर अचानक ऐसा लगा जैसे ततारिया को कुछ याद आ गया हो। वो आहिस्ता से बोली, ओ वो लाश ठहरो, मैं अभी आती हूँ। वो चली गई, लेकिन डॉक्टर सलमान के अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था जैसे इसे इस लाश से कोई सरोकार ही ना हो। कैप्टन, इसने हमीद की आंखों में देखते हुए कहा, तकल्लुफ बरतरफ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में तंजीम के लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया है। शुक्रिया, मैं इस उलझन में था कि इस तस्करे को किस उनवान से छेड़ूं। सोचा था कि कहीं आप इसे मकर न समझे, वरना यह हकीकत है कि तंजीम के फलसफे ने मेरी आंखें खोल दी हैं। यकीनन हर बाशऊर आदमी हमारे फलसफे से आगाह होने के बाद हमारी तरफ आना पसंद करेगा, मगर फिलहाल इसके लिए हालात साजगार नहीं है कि बाकायदा तौर पर इसकी इशात की जा सके। मगर अब मैं सोचता हूँ कि कर्नल फरीदी के अंदाजे कभी गलत साबित नहीं हुए। इसने रूही के हालात से आगाह होते ही कह दिया था कि इदारा रवाबत आमा फ्रॉड है। डॉक्टर सलमान कुछ सोचने लगा, फिर सर उठाकर बोला, तुमने वहाँ कोई शुबा जाहिर किया था? मैंने ततारिया की मौजूदगी में गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं समझा था। किस बात का शुबा था तुम्हें इस आदमी पर? मैं सोच रहा था कि कहीं वो कर्नल फरीदी ना हो। हो सकता है, दरअसल मैं इसी पर इतनी देर से गौर कर रहा था, डॉक्टर सलमान ने कहा, मगर यह सिर्फ शुबा है, यकीन के साथ नहीं कह सकता। आहा, ठहरिए, ऐसा मालूम हुआ जैसे हमीद को यक बयक कुछ याद आ गया हो। इसकी आंखें भी चमकने लगी थी। फिर कपकपाती हुई आवाज में बोला, जरा अपने हरबे पुश फायर की तो खबर लीजिए। अगर वो आदमी फरीदी ही था तो क्या मतलब? आपका वो हरबा कम अज कम इस इमारत में तो मौजूद ना होगा। साफ साफ कहो, मैं फरीदी के तरीकेकार से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। यहाँ से निकल जाने के बाद बाहर से खंजर फेंककर दोबारा 7 लाख रुपयों के बारे में याद दहानी जरूरी नहीं थी। अगर वो फरीदी ही था तो यकीन कीजिए कि इसका मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं था कि हम लोग कुछ देर तक इस कमरे में ठहरे रहे और वो किसी तरह से पुश फायर पर हाथ साफ कर दे। क्या इसका अंदाजा गलत था? क्या हमें सांप नहीं सूंघ गया था? डॉक्टर वो जहनी और जिस्मानी दोनों तरह की लड़ाई का माहिर है। वो अपने मद मुकाबले पर हर जाविये से नजर रखने का आदी है। अगर वो फरीदी ही था तो पुश फायर से हाथ धो रखिए। ठहरो, मैं देखता हूँ। डॉक्टर सलमान बौखलाए हुए अंदाज में उठा और बाहर निकल गया। हमीद के होंठों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट थी, लेकिन यह मुस्कुराहट ज्यादा देर तक बरकरार न रह सकी क्योंकि दूसरे दरवाजे से ततारिया अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर कहाँ है? इसने चारों तरफ देखते हुए कहा, कहीं गए हैं। तुमने मेरी दावत रद्द कर दी थी क्यों? वो मुस्कुराती हुई हमीद की तरफ बढ़ी और हमीद के देवता कूच कर गए। तुम खिसक क्यों रहे हो? वो इसके पास सोफे पर बैठती हुई बोली, तुम आखिर इतना बनते क्यों हो? क्या अब तक औरतों से दूर ही रहे हो? नहीं तो वो देखो, बात दरअसल ये है कि कोई बात नहीं। और क्या बात हुई? पता नहीं, हमीद दूसरी तरफ खिसकता हुआ बोला, मुझे दरअसल यानी के तुम बिल्कुल गधे हो। वो हमीद का बाजू पकड़कर झटका देती हुई बड़बड़ाई, बिल्कुल गधे। क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगी? नहीं, तुम्हें मेरे साथ शराब पीनी पड़ेगी। हमीद को इस वक्त सचमुच ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे आज से पहले कभी किसी औरत की शक्ल तक ना देखी हो। वो दरअसल बात यह है, दरअसल बात सिर्फ इतनी है कि तुम बिल्कुल उल्लू हो, ततारिया ने कहका लगाया। अच्छा, पहले इसका फैसला कर लो कि मैं उल्लू हूँ या गधा, हमीद ने संभाला लिया। इसके बाद मैं सोचूंगा कि हमारी दोस्ती कैसी रहेगी। तुम्हें पीनी पड़ेगी, तुम मेरी दावत रद्द नहीं कर सकते। आज तक किसी में इतनी जरूरत नहीं हुई। उफ़, इस मामले में तुम मेरे बाप से भी ज्यादा तेज मिजाज मालूम होती हो। एक बार उन्होंने शराब पीने पर मुझे घर से निकाल दिया था। ततारिया ने शायद सुना भी ना हो कि हमीद ने क्या कहा था क्योंकि वो मेज की तरफ जाकर दो गिलासों में शराब उंडेलने लगी थी। हमीद आंखें फाड़ फाड़ कर उसे घूरता रहा। जिंदगी में पहली बार किसी ऐसी बेजबक औरत से साबका पड़ा था। हमीद सोच रहा था कि क्या अब पीनी ही पड़ेगी, मगर मुसीबत तो यह थी कि नशे में उसे अपने जहन पर काबू पाना दुश्वार हो जाता था और दिमाग गर्म हो जाने के बाद यह भी मुमकिन नहीं होता था कि दूसरे गिलास की तरफ हाथ बढ़ जाए। वो शराब का आदी नहीं था, कभी कभार किसी चक्कर में पड़कर पी लेना और बात थी वैसे अक्सर फरीदी को चढ़ाने के लिए भी उसने पी थी, वरना यह हकीकत थी कि वो तंबाकू के अलावा हर किस्म के नशे को बुरी नजरों से देखता था। ततारिया दोनों गिलास लिए हुए सोफे की तरफ वापस आ गई। पियो, तुम नहीं जानते कि तुम कितने बड़े एजाज को ठुकराते रहे हो। ततारिया के हाथ से जिसे शराब मिले उसे रामगढ़ में खुशकिस्मत कहते हैं, मुझे रामगढ़ में चगत कहते हैं। लाओ, हमीद ने हाथ बढ़ाकर गिलास ले लिया। मैंने पहली नजर में पहचान लिया था कि तुम वही हो। ततारिया मुस्कुराकर आहिस्ता से बोली, कौन हूँ? हमीद बौखला गया, वही जिसका मुझे साल साल से इंतजार था। ततारिया ने आंखें भींचकर कुर्बान हो जाने वाले अंदाज में कहा और उसकी तरफ झुकने लगी। ठीक है, ठीक है। अमीर ने बेबसी में हाथ हिलाए क्योंकि अब पीछे खिसकने की जगह नहीं थी। वो सोफे के हाथे से टिका हुआ था। अचानक उसी वक्त डॉक्टर सलमान कमरे में दाखिल हुआ। ततारिया पीछे हट आई और हमीद के हाथों से शराब का गिलास पहले ही गिर गया था। डॉक्टर सलमान ने उन्हें घूरती हुई नजरों से देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। ततारिया के चेहरे पर झिझलाहट के आसार थे। सुहेल, अब हमें वापस चलना चाहिए, डॉक्टर सलमान बोला और हमीद उछलकर खड़ा हो गया। सुहेल आज मेरे मेहमान रहेंगे, ततारिया गुर्राई। डॉक्टर सलमान ने हमीद की तरफ देखा लेकिन हमीद की आंखें पहले ही से रहम की भीख मांग रही थी। डॉक्टर सलमान के होंठों पर मुस्कुराहट की हल्की सी परछाई नजर आई और उसने कहा, नहीं ततारिया, आज रात हमें बहुत से काम करने हैं, मैं मजबूर हूँ, सुहेल को यहाँ नहीं छोड़ सकता। जहन्नुम में जाओ। ततारिया ने झलाहट में अपना गिलास दीवार पर खींच मारा, शीशे के टुकड़े फर्श पर गिरकर झनझनाए। बाहर निकलकर गाड़ी में बैठते हुए डॉक्टर सलमान ने कहा, पुष्पर महफूज है और अब मैंने उसे एक महफूज मकाम पर भिजवा दिया है और तब तो वो हरगिज फरीदी नहीं था और इस तरह खंजर फेंकना कतई ला यानी था। मैं फरीदी जैसे आदमी से किसी ला हासिल हरकत की तवक्को नहीं रखता, मगर डॉक्टर ये ततारिया, खुदारा अब मुझे कभी यहाँ आने पर मजबूर ना कीजिएगा। ततारिया के नाम पर डॉक्टर सलमान हंसने लगा लेकिन जवाब में कुछ बोला नहीं। सलमान का दुश्मन। डॉक्टर सलमान कार ड्राइव कर रहा था और हमीद इसके करीब अगली ही सीट पर था। कुछ देर तक वो खामोश रहे, फिर डॉक्टर सलमान बोला, क्यों कैप्टन, क्या तुम्हें यकीन है कि फरीदी जिंदा है? मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। क्यों, क्या उसे कोई हादसा पेश आया? डॉक्टर, अब इन तकलीफात को छोड़िए, मुझे उलझन होती है, क्या आप इस हादसे से वाकिफ नहीं हैं? मैं, डॉक्टर सलमान ने हैरत से कहा, मैं क्या जानूं, क्या आप नहीं जानते कि मैं तंजीम के हेडक्वार्टर की सैर कर चुका हूं? क्या नहीं, इसका लहजा अब भी तहय्युर जिद्दा था। तब फिर आपने मुझ पर कैसे इत्मीनान कर लिया? ताकत का हुक्म, डॉक्टर सलमान ने एक तवील सांस लेकर कहा, इस हुक्म के आगे सर झुका देना ही पड़ता है वरना मुझे तुम पर अब भी एतमाद नहीं है। क्या ये ताकत हकीकतन कोई रूह है? हमीद ने हैरत से कहा, आखिर इसे मेरे जहनी इनकलाब का कैसे इलम हुआ? इसीलिए हम सर झुकाने पर मजबूर हैं, कैप्टन, डॉक्टर बोला, मैं 15 साल से तंजीम से मुंसलिक हूँ लेकिन मेरे फरिश्तों को भी इलम नहीं है कि हेडक्वार्टर कहाँ है। वैसे मेरा ख्याल है कि इस मीटिंग में आपकी हैसियत सबसे बरतर थी, कतई कम अज कम रामगढ़ की पार्टी को मैं ही कंट्रोल करता हूँ, मैंने ताकत का दरबार भी देखा है, हमीद ने फखरिया अंदाज में कहा। अब तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, डॉक्टर सलमान ने कहका लगाया, नहीं हकीकत बयान कर रहा हूँ, मेरी जगह कोई और होता तो पागल हो जाता। उन्होंने मुझे पकड़ा, कुछ दिनों तक जमींदोज दुनिया में रखा फिर बाहर निकाल दिया। जमींदोज दुनिया डॉक्टर सलमान के लहजे में बेयकीनी थी। हमीद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर वो वाक्य दोहराने लगा जो उन्हें कुछ दिनों पहले पेश आया था, किस तरह तंजीम का एक आदमी उन्हें पुलिस कार में लिए फिर रहा था, फिर किस तरह वो उन्हें वीरान इलाके की तरफ ले गया और वो हैरत अंगेज सिटी नामालूम आदमियों से मठभीड़ फरीदी के कारनामे, फिर किस तरह फरीदी इसे एक दरार में ले गया और उसे एक जगह छोड़कर खुद बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने चला गया, फिर किस तरह अचानक इस पर कई आदमी टूट पड़े थे और होश आने पर इसने खुद को इस पुरसरार जमीन दोस्त दुनिया में पाया था। अब वो कुछ देर खामोश रहकर बोला, ऐसे हालात में मसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि फरीदी भी अब तक इसी जमीन दोस्त दुनिया की सैर कर रहा हो और ये भी हो सकता है कि इसे दूसरी दुनिया का सफर इख्तियार करना पड़ा हो। मैंने अपने दौराने कयाम में ये मालूम करने की कोशिश की थी कि इसका क्या हशर हुआ लेकिन नहीं मालूम हो सका। हाँ, डॉक्टर सलमान ने खोई खोई सी आवाज में कहा, बाजों का ताकत के करिश्मे ख्वाब की बातें मालूम होते हैं मगर मैं इन्हें ख्वाब नहीं समझता, हमीद बड़बड़ाया, मैंने सब कुछ बहालत बेदारी देखा है। इसका जिंदा सबूत मेरा ग्रांडील दोस्त है जिसके बाप ने हम पर 6 लाख रुपए खुर्दबुर्द करने का इल्जाम लगाया है। क्या मतलब, मैं नहीं समझा। कासिम भी वहाँ था और इससे वहाँ सादे चेकों पर दस्तखत लिए गए थे, सादे चेक ना कहना चाहिए क्योंकि इन पर रकमें दर्ज होती थी और कासिम ने वही हिसाब लगाकर कह दिया था कि इसका बैंक बैलेंस साफ हो चुका है। डॉक्टर सलमान कुछ न बोला, हमीद बड़बड़ाता रहा, अगर फरीदी जिंदा है तो तंजीम यकीनन खतरे में है, फरीदी को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, वो जो कुछ भी करता है हमेशा तनहा करता है, इसके जराए लामहदूद है। डॉक्टर सलमान हंसने लगा लेकिन हमीद ने इसे इस तरह हंसने की वजह नहीं पूछी। आखिर डॉक्टर खुद ही बोला, ख्याल है तुम्हारा, पिछली बातों को भूल जाओ, इस वक्त हम इतने जी शऊर नहीं थे, कमर शमशाद का तरीकेकार घटिया था, मौजूदा हुक्मरान इससे कहीं ज्यादा दानिशमंद है और फिर अब तंजीम बहुत मुस्तहकम हो गई है, हो सकता है, हमीद ने कहा खामोश हो गया। 12 बज चुके थे, रामगढ़ की सड़कें वीरान हो गई थी, आज सर्दी भी ज्यादा थी, दफतन इनकी कार का अकबी हिस्सा किसी गाड़ी की हेडलाइट से चमक उठा। हमीद ने मुड़कर देखा, एक गाड़ी काफी तेज रफ्तारी से इनके पीछे आ रही थी। अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो इनकी कार से आगे निकलना चाहती हो। डॉक्टर सलमान ने कार एक तरफ कर ली लेकिन रफ्तार में कोई फर्क नहीं आने दिया। अचानक पिछली कार से दो फायर हुए, दो धमाके और वो कार आगे निकल गई। लेकिन डॉक्टर सलमान की कार बैलगाड़ी बन गई थी, पिछले दोनों टायर बर्स्ट हो चुके थे। हमीद ने पहली बार डॉक्टर सलमान जैसे महजब आदमी की जबान से गंदी गंदी गालियां सुनी। इस वक्त गुस्से में कोई घटिया किस्म का लफंगा मालूम हो रहा था या कोई ऐसी बेवा औरत जो पड़ोसों की छेड़छाड़ से तंग आ गई हो। दूसरी सुबह के अखबार ने इस खबर को बुरी तरह उछाला। सुर्खी थी, डॉक्टर सलमान का सितम जरीफ दुश्मन। खबर थी कि किसी ने पिछली रात डॉक्टर सलमान की दूसरी कार के पिछले दोनों टायर पर फायर करके बेकार कर दिए, जबकि वो मादाम ततारिया की तरफ से दिए गए डिनर से वापस जा रहे थे। खबर रसा एजेंसी न्यूज स्टार के रिपोर्टर ने उन्हें बेबसी के आलम में एक वीरान सड़क पर देखा। रिपोर्टर जनवार से वापस आ रहा था, इसने अपनी कार में डॉक्टर सलमान और इनके साथी को उनकी कोठी तक पहुंचाया। लेकिन आज अखबारात का रवैया इस सिलसिले में हमदर्दाना था। आज तकरीबन सभी ने इदारा रवाबित आमा की खिदमत को सराहते हुए डॉक्टर के नामालूम दुश्मन पर बेपनाह बुछाड़े की थी, लेकिन इसकी दुश्मन की वजह पर भी कोई रोशनी नहीं डाल सका था। वैसे इस पर हैरत जरूर जाहिर की गई थी कि आखिर नजला डॉक्टर की कारों ही पर क्यों गिर रहा है, लेकिन हकीकत से सिर्फ डॉक्टर सलमान आगाह था और पिछली रात के हमले का मकसद भी आज ही सुबह जाहिर हो गया था। इदारा रवाबित आमा का दफ्तर जब आज खोला गया तो लोग मुतहैर रह गए, क्योंकि उन्हें कमरे के वस्त्र में जले हुए कागजात का एक ढेर नजर आ रहा था। सारी अलमारियां उलट पुलट डाली गई थी क्योंकि चीज अपनी जगह पर नहीं थी। डॉक्टर सलमान ने ये सब कुछ देखा और दम बखुद रह गया। क्या ये थ्रीसिया? हमीद आयता से बड़बड़ाया। मेरे साथ हाउ कैप्टन, डॉक्टर सलमान ने मुस्तरबाना अंदाज में कहा। वो दोनों दफ्तर से निकलकर इमारत के रिहायशी हिस्से में आए। डॉक्टर सलमान इसे लाइब्रेरी की तरफ लेता चला गया। वहाँ इस वक्त भी साहिरा मौजूद थी। हमीद ने उसे बेचैनी के आलम में टहलते देखा। इसके चेहरे पर कुछ इस किस्म के आसार थे जैसे कोई गुमशुदा चीज तलाश करते वक्त पैदा हो जाते हैं। वो उन्हें देखकर छिटक गए और डॉक्टर सलमान ने उसे वहां से चले जाने का इशारा किया। सायरा इन दोनों पर एक चटती सी नजर डालती हुई बाहर चली गई। हमीद इस वक्त मेकअप में नहीं था। अब तंजीम को तुम्हारी सलाहियतों की जरूरत है, डॉक्टर सलमान ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। मैं हर तरह तैयार हूँ। ये थ्रीसिया बम्बल भी मैं समझता हूँ, हमीद सर हिलाकर बोला। इन लोगों का वजूद तंजीम के लिए खतरनाक है। अगर उन्होंने अपनी मालूमात पुलिस तक पहुंचा दी, पुलिस को अलग ही रखो, डॉक्टर सलमान बोला। पुलिस को तो हमने बहुत दिनों पहले से चैलेंज कर रखा है। ये थ्रीसिया बम्बल भी मुमकिन है हमारे काम में हारिज हो। तेवर तो यही कहते हैं डॉक्टर, मगर वो आखिर चाहती क्या है? सीधे साधे अल्फाज में रुपया, डॉक्टर सलमान ने जवाब दिया। या यूं भी कह सकते हो कि वो हमें ब्लैकमेल करना चाहती है, हमीद ने कहकहा लगाया और देर तक हंसता, फिर बोला। तंजीम को ब्लैकमेल करना चाहती है इस अजीम जुमात को जो सारी दुनिया पर साजाने का प्रोग्राम बना चुकी है। नई दुश्मन को हकीर समझना नादानी है, डॉक्टर सलमान तशवीशकुन लहजे में बोला। हम नहीं जानते कि वो कितने पानी में है, यकीनन इसके जराए काबिल इत्मीनान होंगे, वरना वो खुद ही हमसे टकराने की कोशिश ना करती। इनके मुतल्लिक इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे आपको यकीन हो कि वो हकीकतन थ्रीसिया ही का ग्रोह है। मैं तो फिलहाल यकीन करने को तैयार नहीं हूँ। वो जो कोई भी हो इससे बहस नहीं, लेकिन जिस अंदाज में वो सामने आए हैं वो तशवीशनाक है। वो कोई भी हो, इनका खात्मा हर सूरत में जरूरी है। ठीक है, हमीद ने आहिस्ते से कहा, कुछ सोचने लगा। इतने में एक मुलाजिम ने आकर किसी का कार्ड दिया और डॉक्टर सलमान ये कहता हुआ उठ गया। इस पर गौर करो, हमीद गौर करता रहा। इसे 100% यकीन था कि थ्रीसिया वाला स्कैंडल फरीद ही ने खड़ा किया है। जाहिर है कि वो मुखिया तो मार न रहा होगा, मगर ये तरीका इसकी समझ में ना आ सका। फिर वो उस औरत के मुतलक सोचने लगा जो थ्रीसिया का रोल अदा कर रही थी। वो कौन हो सकती है? मुमकिन है फरीद की ब्लैक फोर्स की कोई औरत हो। ब्लैक फोर्स में औरतें भी थी और हमीद को इसका इलम था। क्या सोच रहे हैं आप? वो सायरा की आवाज सुनकर चौंक पड़ा जो चुपचाप आकर इसकी पुश्त पर खड़ी हो गई थी। ओहो, क्यों, क्या बात है? हमीद ने घूरकर पूछा। आप तो खफा हो गए, लीजिए चली जाती हूँ। नहीं ठहरो, क्या बात है? बात तो है, वो सर झुकाकर सैंडल की टो से फर्श पर हल्की हल्की ठोकरें लगाती हुई बोली। मगर कहीं आप खफा ना हो जाए, बुरा ना मान जाए, तुम बात भी तो बताओ। नहीं, पहले आप वादा कीजिए कि बुरा ना मानेंगे। मैं वादा करता हूँ, सायरा ने अपने ब्लाउजर के गिरेबान में हाथ डालते वक्त एक तवील सांस ली और जब वो हाथ बाहर आया तो इसमें एक खूबसूरत सी अंगुश स्त्री थी। यह मैं आपको देना चाहती हूँ, इसने कहा और फिर कुछ इस अंदाज में इसके चेहरे की तरफ देखने लगी जैसे अंदाजा करना चाहती हो कि इसने बुरा तो नहीं माना। हाय, हमीद आंखें फाड़कर बोला। इसमें बुरा मानने की क्या बात थी? ओ, मैंने कहा शायद आप पता नहीं क्या समझें। क्या समझता मैं? ओ वो कुछ नहीं, मैंने सोचा था कहीं आप ये नहीं समझे, क्या ना समझूं, ओहों छोड़िए, बहरहाल आप बुरा नहीं मानेंगे। नहीं, अब मुझे इस मसले पर गौर करना पड़ेगा, किस मसले पर, इसी पर के मुझे बुरा मानना चाहिए या ना मानना चाहिए। ओहो, सायरा यक बयक उदास हो गई और अपने खुश होंठों पर जुबान फेरती हुई बोली, अच्छा आप गौर कर लीजिए। फिर वो जाने के लिए मुड़ी थी कि हमीद ने कहा, ठहरो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। वो रुक गई लेकिन इसकी पल के नीचे ही झुकी रही। जायरे, हमीद आहिस्ता से बोला, तुम ये अंगुश्तरी मुझे इसलिए दे रही हो कि मैं इसे इस्तेमाल करूं? जी हाँ, वो इसकी आंखों में देखती हुई बोली, लेकिन अगर तुम्हारे भाई ने इस पर एतराज किया तो? अरे वो क्या जाने, वो हाथ हिलाकर बोली, ये तो मैंने कल ही आपके लिए खरीदी थी। मैं दरअसल, मैं क्या बताऊं, कल मेरा दिल चाहा था कि आपके लिए और भी चीजें खरीदूं। आपका ये स्वेटर अच्छा नहीं है, मैंने एक बड़ा अच्छा स्वेटर देखा है, फिर मैंने सोचा मुमकिन है कि आप बुरा मानाए। मैं आपके लिए अपनी पसंद के जूते भी खरीदने चाह रही थी और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, हमीद ने नरम लहजे में कहा। तो आप बुरा नहीं मानेंगे अगर मैं ये सारी चीजें आपके लिए खरीदूं? नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे लिए और कुछ ना खरीदना। ये अंगुश्तरी बहुत खूबसूरत है, पसंद है ना आपको? वो किसी नन्ही सी बच्ची की तरह खुश होकर बोली, मैं जानती थी कि आपको जरूर पसंद आएगी। हमीद ने अंगुश्तरी के लिए हाथ बढ़ा दिया और जब उसे उंगली में पहन रहा था, सायरा दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़ी हो गई। हमीद ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा, इसके जिस्म पर हल्की सी लर्जिश नजर आ रही थी, ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो हंस रही हो। हमीद को यकबयक गुस्सा आ गया कि वो इसे इतनी देर से उल्लू बना रही थी। वो झपटकर उठा लेकिन जैसे ही इसके सामने पहुंचा, शशधर रह गया। वो रो रही थी, मोटे मोटे आंसू इसके रुखसारों पर ढलक रहे थे। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया। ये क्या तुम? हमीद बुखलाए हुए अंदाज में हुकलाया, मुझे जाने दीजिए। वो उसे एक तरफ धकेलते हुए लाइब्रेरी से भाग गई। हमीद अपना सर सहलाता रह गया, ये लड़की न जाने क्या बला थी। कुछ देर बाद उसने अंगुश्तरी पर नजर डाली जिस पर हीरे का एक बड़ा सा नगीना चमका रहा था। वो यकीनन एक बेशकीमत अंगुश्तरी थी। हमीद उसे काफी देर तक उलट पुलट कर देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे महसूस होने लगा जैसे वो जगमगाता हुआ पत्थर भी शफाफ आंसू का कतरा हो। इसने अपना हाथ नीचे गिरा दिया और सायरा के मुतालिक सोचने लगा, क्या इसका जहनी तवाजन बिगड़ गया है? क्या यह मुमकिन है कि डॉक्टर सलमान जैसे माहिर नफ्सियात ने इसकी जहनी हालत सुधारने की कोशिश ना की होगी? फिर वो ऐसी क्यों है? हमीद लाइब्रेरी ही में बैठा रहा। तकरीबन एक घंटे बाद डॉक्टर सलमान फिर वहां आया। अरे तुम अभी तक यहीं हो कैप्टन, इसने हैरत से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरों में देख रहा था। हाँ उलझने, आजकल मुझे सर पैर का होश नहीं है। कोई नहीं उलझन डॉक्टर सलमान, मैंने खेज अंदाज में मुस्कुराया। थ्रीसिया बम्बल बी ऑफ बोहिमिया, ओ लेकिन तुम इसके सिलसिले में काम का आगाज कहाँ से करोगे? हमें इनके ठिकानों का इलम तो है नहीं। मैं इसी के मुतालिक सोच रहा था कि अंधेरे में तीर मारने से क्या फायदा। अंधेरे में क्यों, क्या तुम्हें अब तक उजाला नजर नहीं आया? फिलहाल नहीं, मुझे यकीन है कि इसका कोई न कोई आदमी ततारिया के लोगों में आ मिला है और महज इसी की वजह से वो पिछली रात वहां से निकल जाने में कामयाब हुआ था। वरना ततारिया की कोठी तो ऐसी नहीं जिससे कोई इतनी आसानी से गुलू खलासी हासिल कर ले। हो सकता है, मुमकिन है, मैंने वहां खासी भीड़ देखी थी। क्या वो सब ततारिया के जाने पहचाने आदमी हैं? इसे मालूम करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि तुम्हें वहीं से तफ्तीश का आगाज करना चाहिए। वहीं से, हमीद बुखला गया, यानी फिर ततारी की कोठी में जाना पड़ेगा। डरो नहीं, डॉक्टर सलमान मुस्कुराया, उसे हैंडल करने के दूसरे तरीके भी हैं। हमीद कुछ बोला नहीं, जवाब तलब नजरों से उसकी तरफ देखता रहा। डॉक्टर सलमान थोड़े तवक्कुफ के साथ फिर बोला, ततारिया सनफी अजूबा है, जिनसी बेराहरवी के बतेरे रोजाना बयक वक्त इसमें मौजूद है। वो नमवीनियक भी है और मसाकिट भी है। अगर तुम उसे नित नई इज्जतें दे सको तो वो वशियानापन का मुजाहरा करना तर्क कर देगी। ओ हमीद होंठ सिकोड़ कर रह गया और सलमान बोला, तुम्हें बहरहाल ये काम करना है और ततारिया से महफूज रहना, यह खुद तुम्हारी जान पर मुनहसर है। आहा, तब मैं इसे देख लूंगा। खैर अभी मुझे इतला मिली है कि पुलिस थ्रीसिया के पीछे लग गई है, मतलब ये कि इसकी शख्सियत का इलम हो गया है, लेकिन अब उन्हें उसे ढूंढ निकालने में बेतेरी दुश्वारियां नजर आ रही हैं। इसका तो मतलब यह हुआ कि यहाँ की पुलिस बिल्कुल निकम्मी है। अगर इसे इसका पता नहीं मालूम तो इसकी मालूमात के जरिए यकीनन अजीब होगा, और अगर यह पता मालूम है तो दुश्वारी का नाम भी ना लेना चाहिए। उसे कुछ ऐसे कागजात मिले हैं जिनसे इन लोगों पर रोशनी पड़ती है। कागजात कहाँ से मिले हैं? चेहरों में बताता हूँ, पूरी बात बताए बगैर मैं तुम्हें मुतमईन नहीं कर सकूंगा। पुलिस ऐसे चार आदमियों की निगरानी कर रही है जिनके पास कल तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन आज इनके जिस्मों पर बेहतरीन किस्म के सूट मौजूद हैं। जहाँ इनका कयाम था इस इमारत पर पुलिस ने अचानक छापा मारा और कई ऐसी चीजें बरामद कर ली जिनका रखना गैर कानूनी है। इन चारों के बयान के मुताबिक वहाँ एक ट्रांसमीटर भी था जो पुलिस के हाथ नहीं लग सका। उन्होंने बताया कि वहाँ एक औरत थी और दो मर्द जो दो दिन से वहाँ नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि मर्दों में एक ने इन्हें मुलाजिम रखा था और उम्दा किस्म के कपड़े उसी ने बनवाए थे। ये चारों हैं कौन? हमीद ने पूछा। रामगढ़ के छठे हुए बदमाश। वहीं से कागजात भी बरामद हुए थे। हाँ, जाहिर है कि अब वो तीनों वहाँ आने से रहे, कौन जाने। डॉक्टर सलमान किला में घूरता हुआ बोला, चंद लम्हे खामोश रहा, फिर कहने लगा, थ्रीसिया बम्बल भी मेरी समझ से बाहर है। हाँ हाँ, लेकिन मैं देखूंगा आपका ये ख्याल किस हद तक सही भी हो सकता है कि इसका कोई आदमी ततारिया के लोगों में आ मिला है, वरना पिछली रात वो आदमी इतनी आसानी से फरार ना हो सकता। यकीनन अंदर से इसकी मदद की गई होगी। डॉक्टर सलमान खामोश रहा। अजनबी की आमद। यह दूसरा दिन था और थ्रीसिया बम्बल बी की तरफ से सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी गई थी। इस दौरान में फिर कोई नया वाकया नहीं हुआ था। ततारिया और इसके आदमियों में काफी बेचैनी पाई जाती थी। ये और बात है कि वो इसका इजहार ना होने देते रहे हूँ। हमीद अब भी उलझन में था और कतई तौर पर ये नहीं कह सकता था कि थ्रीसिया की पुष्ट पर फरीदी ही होगा। हालात ही ऐसे थे। बहरहाल वो डॉक्टर सलमान की तजवीज के मुताबिक सुहेल की हैसियत में ततारिया के यहाँ तनहा जा पहुंचा। वो इस वक्त बहुत स्मार्ट लग रहा था। इसके जिस्म पर ब्राउन चमड़े की जैकेट और खाकी गबर्डीन की पतलून थी और हाथों में चमड़े के दस्ताने। ततारिया उसे देखकर खिल उठी। मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे, इसने एक शौक सी मुस्कुराहट के साथ कहा। कमरे में 2 आदमी पहले से मौजूद थे, शायद वो इसके मुलाजमों ही में से थे, क्योंकि इसके इशारे पर वो बड़े सादतमंदाना अंदाज में वहाँ से उठ गए थे। तुम बैठते क्यों नहीं, ततारिया फिर बोली। जरूरी नहीं, हमीद ने चिड़चिड़े आदमी की तरह कहा। क्या मतलब, तुम बकवास बहुत करती हो और मुझे ये पसंद नहीं है। हाँ, ततारिया हैरत से आंखें फाड़कर रह गई। शायद उसे हमीद से इस लबो लहजे की तवक्को नहीं थी और ये हकीकत भी थी कि बड़े बड़े इसके सामने आकर कांपने लगते थे। हमीद ने अभी तक सिर्फ डॉक्टर सलमान ही को इससे बेतकल्लुफाना अंदाज में गुफ्तगु करते देखा था और वो इससे कुछ दबती भी थी। मुझे इस इमारत में रहने वालों की लिस्ट चाहिए, हमीद ने कहा। तुम होश में हो या नहीं, किससे गुफ्तगु कर रहे हो, ततारिया गजबनाक होकर बोली। मैं ताकत का नुमाइंदा हूँ और तुमसे इस मकान में रहने वालों की लिस्ट तलब कर रहा हूँ। उस रात की बातें भूल जा, मैं सिर्फ यहाँ के हालात का जायजा लेने के लिए नरमी बरत रहा था, वरना मैं बहुत सख्त आदमी हूँ। बकवास बंद करो, ततारिया हलक फाड़ कर बोली। दरअसल हमीद का दाना हाथ पतलून की जेब में गया और जब बाहर आया तो इसमें चमड़े का एक चाबक था। शाही इसने ततारिया के बाजू पर एक चाबक रसीद कर दिया। ततारिया जहाँ थी वहाँ रह गई। इसका मुँह फैल गया था और दाना हाथ चोट खाए हुए बाजू को मसल रहा था। मैं तुमसे लिस्ट तलब कर रहा हूँ, हमीद ने फिर दोहराया, लेकिन ततारिया कुछ नहीं बोली। वो इसकी आंखों में देख रही थी और इसके चेहरे पर कुछ इस किस्म के आसार थे, जैसे इस चोट को मसलने में बड़ी लज्जत मिल रही हो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, हमीद धाड़ा नहीं, ततारिया ने आहिस्ते से सुस्कारी ली और बड़े दल आवेज अंदाज में मुस्कुराने लगी। इसकी आंखें कुछ ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी सोकर उठी हो। हमीद ने दोबारा चाबक घुमाया और इस बार इसकी रानों पर पड़ा। ओ उफ, वो होले होले कराहती हुई सोफे पर गिर पड़ी। तीसरा चाबक फिर पड़ा और वो कराही। बड़े जालिम हो, मैं लिस्ट नहीं दूंगी, हमीद का हाथ फिर चल गया। आखिर तेरा चाबक खा चुकने के बाद वो कराहती हुई उठ बैठी। अब उसके खदोखाल फीके नजर आने लगे थे और आंखें धुंधला गई थी। अंदाज से कसलमंदी जाहिर हो रही थी, जैसे बहुत ज्यादा मेहनत ने उसे थका दिया हो। इसके होंठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और आहिस्ता से बोली, सचमुच तुम बड़े बेदर्द हो, मगर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर तुमने बकवास शुरू कर दी है, लिस्ट क्यों चाहिए, क्या मैं फिर चाबक उठाऊं। नहीं अब बस हद होती है, इसने हाथ उठाकर कहा और आंखें बंद कर ली। मैं तुम्हारे एक एक आदमी को चेक करना चाहता हूँ। मुझे शुबा है कि यहाँ थ्रीसिया का भी कोई आदमी मौजूद है। नहीं, ये नामुमकिन है, सारे आदमी मेरे जाने पहचाने हुए हैं। तुम्हारी खोपड़ी में मगज की बजाय भूस भरा हुआ है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि थ्रीसिया मेकअप की माहिर है, मगर तुम क्या जानो, पता नहीं तंजीम तक तुम्हारी रसाई कैसे हो गई। तुम खामखा मुझे गुस्सा न दिलाओ, ततारिया फिर झिझला गई। इमारत तुम्हारे सामने है, सारे आदमी भी मौजूद है, जाकर झक मारो। किसकी मजाल है कि ततारिया को धोखा देकर यहाँ रह सके। मैंने न जाने क्यों तुम्हें इस वक्त माफ कर दिया, वरना तुम्हारी एक बोटी का भी पता न चलता। अच्छी बात है, मैं उन्हें चेक करने जा रहा हूँ, अमीन ने गुस्से लेते हुए कहा। लेकिन अगर किसी ने दखल अंदाजी की तो इसकी मौत की जिम्मेदारी तुम पर होगी। यहाँ मौत और जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, अब तुम मेरे सामने से दफा हो जाओ। हमीद कमरे से निकल गया। काम जल्दी खत्म होने वाला नहीं था। हमीद को काफी देर लगी, लेकिन इसके अंदाजे के मुताबिक यहाँ एक आदमी भी बाहर का साबित न हो सका। वो सब एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते थे और हमीद को खैर इसका सलीका तो था ही के असल और मसनू चेहरों में तमीज कर सकता। वहाँ उसे कोई भी मेकअप में ना मिला। इसे अगर एक तरफ नाकामी हुई थी तो दूसरी तरफ मालूमात में इजाफा भी हुआ था, क्योंकि इसी दौरान में इसे इस इमारत को देखने का भी तो मौका मिल गया था। इसीलिए वो आज की मुहिम को नाकाम नहीं करार दे सकता था। वो फिर इसी कब्र में वापस आ गया जहाँ ततारिया पर चाबक बरसाए थे। ततारिया यहाँ अब भी मौजूद थी, लेकिन इस ततारिया से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही थी, जो कुछ देर पहले हमीद के हाथों फिट चुकी थी। अब इसके खदोखाल में फिर वही पहला सा तीखापन आ गया था। हमीद को देखकर वो कुछ और ज्यादा बर अफरोख्ता नजर आने लगी। तुमने क्या समझकर ये हरकत की थी, क्या तुम समझते हो कि यहाँ से जिंदा वापस जाओगे, ततारिया हुर्राई। हाँ, मैं यहाँ से जिंदा वापस जाऊंगा और कल फिर तुम मुझे यहाँ देखोगी। जब एक सड़क मुजरिम पुश फायर को बेकार करके यहाँ से वापस जा सकता है तो फिर मैं तो ताकत का नुमाइंदा हूँ। ताकत, ततारिया मुंह बिगाड़ कर बोली। जाओ यहाँ से, अब कभी तुम्हारी शिकल
نہ دکھائی دے، یہ تو مجھ سے بہت ظلم ہوگا۔ تتاریہ ڈارلنگ، حمید مسکرایا، تم پہلی عورت ہو جس نے اتنے سکون کے ساتھ میرے ہاتھوں مار کھائی ہے، میں تمہیں کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تتاریہ کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نظر آنے لگے، پھر اس نے سنبھل کر کہا، کیا بکواس ہے، او تم میری افتاد طبع سے واقف نہیں ہو، گداز جسم والی عورتوں پر چابک برسا کر مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس لذت کو کن الفاظ میں بیان کرنا چاہیے۔ اب اسی وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ تمہارے سارے جسم داغدار کر دوں، اس وقت تک چابک برساتا رہوں جب تک کہ تم مر نہ جاؤ۔ تتاریہ ڈارلنگ، نہیں، تتاریہ کی آنکھیں چمکنے لگی، یہ حقیقت ہے، خطرناک آدمی ہو۔ تتاریہ مسکرائی، لیکن وہ اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی دلی کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اتنے میں ایک نوکر نے آ کر کسی کا وزٹنگ کارڈ پیش کیا۔ او، یہ اس وقت کیوں آیا ہے؟ تتاریہ بڑبڑائی، پھر نوکر سے بولی، بٹھاؤ، وہ کہہ رہے ہیں کہ آدھے منٹ کی دیر بھی خطرناک ثابت ہوگی۔ کیوں؟ تتاریہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ اچھا، اسے یہیں لاؤ۔ نوکر چلا گیا۔ تتاریہ نے حمید سے کہا، چلو ادھر قاعدے سے بیٹھ جاؤ، میں اپنے ملازموں کے سامنے بے تکلفی کی اجازت نہیں دوں گی۔ او، تم مطمئن رہو، حمید مسکرا کر ایک طرف بیٹھتا ہوا بولا، میں کسی تیسرے کی موجودگی میں تم پر کبھی ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، تم گدے ہو، منہ بند رکھو۔ دوسرے ہی لمحے میں کاریڈر سے قدموں کی آواز آنے لگی اور پھر ایک ادھیڑ عمر آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ کیا بات ہے؟ تتاریہ نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ مادام، کیا عرض کروں، سب کچھ قطعی اچانک ہوا اور اب حالات میرے قابو سے باہر ہیں۔ اصلی واقعہ بیان کرو، تتاریہ نے جھنجھلا کر کہا۔ جھلموار والے کارخانے کے مزدوروں نے ہڑتال کر دی ہے، کرنے دو، وہ جک مار رہے ہیں۔ جب ایک بار کہہ دیا گیا کہ ان کے مطالبات پر ہمدردی سے غور کیا جائے گا، پھر وہ اتنی بے صبری کیوں ظاہر کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم مادام سے براہ راست گفتگو کرنا چاہتے ہیں، انہیں بکنے دو، تم کیسے گدے ہو کے اتنی سی بات پر دوڑے چلے آئے؟ کیا تم انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے؟ مادام، مجھے افسوس ہے کہ نہ کر سکا، اس نے کہا اور چند لمحے خاموش رہ کر شکایت آمیز لہجے میں بولا، کیا آپ نے کبھی مزدوروں کو یہ محسوس ہونے دیا ہے کہ میں ان پر حاکم ہوں؟ ہر موقع پر آپ دخل اندازی کرتی رہی ہیں، لہٰذا پہلے ہی کی طرح وہ آج بھی صرف آپ ہی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی جرت اتنی بڑی ہوئی ہے کہ وہ آپ کو جھلموار میں طلب کر رہے ہیں۔ دھمکی ہے کہ اگر آپ 2 بجے تک جھلموار نہ پہنچے تو وہ کم از کم ایک ہفتہ کی ہڑتال کریں گے، اور آپ جانتی ہیں کہ آنے والا ہفتہ کاروبار کے لیے کتنا اہم ہوگا۔ یقیناً ہڑتال ہمارے لیے بری ثابت ہوگی، ستاری کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ اچھا، میں چلوں گی۔ آنے والا کچھ نہیں بولا، وہ ابھی تک بیٹھا بھی نہیں تھا۔ ستاریہ نے سر کی جنبش سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور حمید سے بولی، کیا تم میرے ساتھ جھلموار چل سکو گے؟ ضرور چلوں گا، تو پھر اب دیر نہ کیجیے مادام، اب اپنا منہ بند رکھو۔ تتاریہ چلا گئی۔ پھر حمید اور نووارد کو تقریباً 15 منٹ تک تتاریہ کا انتظار کرنا پڑا، کیونکہ وہ لباس تبدیل کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ نووارد اپنی کار پر آیا تھا اور خود ہی ڈرائیو بھی کر رہا تھا۔ تتاریہ کی کار پر صرف حمید اور تتاریہ تھے، تتاریہ نے اور کسی کو ساتھ نہیں لیا تھا، حمید ہی اس کی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ تتاریہ اس کے پاس اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ شہر سے نکل کر وہ جھلموار والی سڑک پر ہو لیے، اسی سڑک پر روحی کی کوٹھی بھی تھی۔ حمید قاسم کے متعلق سوچنے لگا تھا، کئی دنوں سے اسے اس کے متعلق کچھ نہیں معلوم ہوا تھا، پھر قاسم سے اس کا ذہن زائرہ کی طرف بھٹک گیا۔ آج کل وہ اس کے متعلق بہت سوچتا تھا، وہ عجیب ترین تھی، نہ یہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ پاگل ہے اور نہ اسے صحیح دماغ ہی سمجھا جا سکتا تھا۔ او، کیا تم گونگے ہو گئے ہو؟ تتاریہ نے حمید کی بائیں ران میں چٹکی لی۔ اوہ، یہ کیا حرکت؟ حمید تلملا گیا، پھر سنبھل کر بولا، میں بھیڑیے کے دانت رکھتا ہوں، ایسی حرکتیں نہ کرو کہ بعد میں سسک سسک کر مرنا پڑے۔ ابھی تم نے مجھے اذیت رسانی کے جنون میں مبتلا نہیں دیکھا، تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ الگ کر دوں گا۔ تتاریہ ہنس پڑی اور پھر آنکھیں بند کر کے اس طرح ہولے ہولے کرانے لگی جیسے سچ مچ حمید اس کے جسم کی دجیاں اڑا دینے پر تل گیا ہو۔ حمید کے دونوں ہاتھ سٹیئرنگ پر تھے اور نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا ہوا تھا۔ نووارد کی کار آگے تھی، وہ تتاریہ کے ایک کارخانے کا منیجر تھا، تتاریہ سے حمید کو یہی معلوم ہوا تھا۔ تتاریہ کچھ دیر تک اسی انداز میں کراہتی رہے، پھر بولی، تم وہیں سلمان کے ساتھ رہتے ہو؟ ہاں، میں سلمان کے ساتھ رہتا ہوں۔ وہ تمہارے چچا کا لڑکا ہے؟ نہیں، میں اس کے چچا کا لڑکا ہوں۔ کیا تم اپنی کزن سائرہ کو پسند کرتے ہو؟ وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ میں اسے بالکل پسند نہیں کرتا، حالانکہ وہ تمہارے خیال کے مطابق بہت حسین ہے۔ کیوں نہیں پسند کرتے؟ اس سے تو تمہاری شادی بھی ہو سکتی ہے۔ صرف یہی تو نہیں ہو سکتی، اور سب کچھ ہو سکتا ہے، کیوں شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ دماغ مچاٹو، ہمیں جھنجھلا کر بولا، ہمارے خاندان میں شادی بیاہ کا رواج نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں لڑکیاں عمر سارے کی طرح کریک ہوتی ہیں، کئی بار سے لڑکی لاؤ تو وہ بھی کریک ہو جاتی ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ دنیا کی ہر عورت بحیثیت بیوی کریک ہوتی ہے۔ تتاریہ ہنس لگی، تم ہنس رہی ہو؟ امید گسیلے لہجے میں بولا، میرے خاندان کی ایک بہت بڑی ٹریجڈی پر ہنس رہی ہو، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ ٹریجڈی؟ تتاریہ نے حیرت سے کہا، میں نہیں سمجھی، کیا کرو گی؟ سمجھ کر حامد آہستہ سے بڑبڑا، میری मेरी माँ की वजह से मेरे बाप ने खुदकशी कर ली थी। ओह क्यों? ततारिया यक बयक चौंक पड़ी। मेरी माँ क्रैक थी, जायल थी, अपने दस्तखत तक नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरे बाप को अहमक समझती थी। समझती नहीं थी बल्कि एलानिया बेवकूफ कहती थी। और मेरा बाप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, इसके पास दर्जनों सर्टिफिकेट और दर्जनों डिग्रियां थी, लेकिन मेरी जाहिल माँ उसे एलानिया बेवकूफ कहती थी। इससे मेरे बाप की हर बात में ऐब नजर आते थे। आखिर एक दिन इस मजलूम ने सारे सर्टिफिकेट और सारी डिग्रियां अपने सीने पर बांधी और कुएं में छलांग लगा दी। नहीं, ततारिया हैरत से बोली, हाँ तुम्हें क्यों यकीन आने लगा? हो सकता है तुम्हारे शोहर ने भी खुदकशी ही की हो। बकवास मत करो, तुम बिल्कुल गधे हो, शट अप। दफअतन ततारिया के मैनेजर की कार रुक गई और वो उन्हें भी रुकने का इशारा करता हुआ अपनी गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ आया और जेब से कुंजी निकालकर डक्के का कुफल खोलने लगा। क्या बात है, हमीद ने पूछा। पेट्रोल खत्म हो गया जनाब, लेकिन मेरे पास कई गैलन पेट्रोल मौजूद है, इसने जवाब दिया। फिर झुंझलाए हुए अंदाज में बड़बड़ाया, क्या हो गया है कमबख्त कुफल को? दो मिनट गुजर गए लेकिन कुफल न खोला। क्या कर रहे हो तुम? ततारी ने उसीली आवाज में उसे मुखातिब किया। वो सीधा खड़ा होकर खजालत आमेज अंदाज में अपनी पेशानी रगड़ता हुआ बोला, न जाने कुंजी क्यों नहीं लग रही है मादाम। तुम भी यार बीवी के शिकार मालूम होते हो, अमीन ने कार से उतरते हुए कहा। लाओ मैं देखूं। वो इसकी कार के करीब आया, इससे कुंजी ली और कफल खोलने के लिए झुक पड़ा, लेकिन दूसरे ही लम्हे में उछलकर अलग हट जाना पड़ा क्योंकि ततारिया के मैनेजर ने इसकी पतलून के जेब में हाथ डालकर इसका रिवॉल्वर निकाल लिया था। ये क्या हरकत, हामिद आंखें निकालकर घबराया। आप इसकी फिक्र न कीजिए जनाब, बराए करम कुफल खोलिए, मैं आपको इसी डिक्के में बंद करके आराम से चलूंगा। अच्छा, हमीद जलाकर ततारिया की तरफ मुड़ा, वो भी कार से उतर आई थी। इसने इससे कहा, क्यों ततारिया, क्या तुम मलका काना से टकराने की जरूरत कर सकोगी? हरगिज नहीं, ततारिया जल्दी से बोली, मैं नहीं जानती क्या मामला है। हाँ तुम ना जानती होगी, फिर इसके मैनेजर ने कहा, लेकिन ये मुमकिन है कि मैं तुम दोनों की लाशें यहीं छोड़ जाऊं। ए दोस्त, अगर तुमने जरा बराबर भी चलाक बनने की कोशिश की तो अपनी खोपड़ी के सुराख के जिम्मेदार खुद होगे। हमीद उसे कह आलूद नजरों से घूरता रहा। मैनेजर बोला, बेहतर तो यही है कि तुम अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लो, वरना हो सकता है कि ट्रिगर दब ही जाए। हमीद ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। मैं तुमसे नहीं कहूंगा, मैनेजर ततारिया की तरफ देखकर मुस्कुराया। आखिर उस नमक हरामी की वजह, ततारिया पलकें झपकाती हुई बोली, सिर्फ इसलिए कि तुम कल 7 लाख अदा करना ना भूलो। क्या मतलब? ओ तुम भी इन दगाबाजों से मिल गए हो? कौन? मैं? मैनेजर ने हैरत से कहा, फिर हंसकर बोला, नहीं ततारिया तुम इस गलत फहमी में ना पढ़ो कि मैं तुम्हारा कोई नमक ख्वार हूँ। थ्रीसिया बम्बलबी ऑफ बोहिमिया का वही अदना खादिम जिसे तुम्हारे एक आदमी ने कोयले के मुजस्मे में तब्दील कर दिया था। ओहो, ततारिया का मुंह फैल गया और फिर वो अपने खुश होंठों पर जबान फेरने लगी। मैं इस वक्त तुम पर सिर्फ ये जाहिर करना चाहता था कि तुम किसी सूरत से भी बच नहीं सकती। तुम्हें हर हाल में कल 6 बजे शाम तक 7 लाख अदा करने पड़ेंगे कैश और असली करेंसी में। तुम 7 अकनियां भी ना पा सकोगे, हमी ने उसे ललकारा। थ्रीसिया के खादिम के लिए ये बिल्कुल नई बात होगी अगर वो अपनी धमकी को अमली ना पहना सके, इसने खुश लहजे में कहा। फिर ततारिया से बोला, अदम अदायगी की सूरत में तुम 6:05 पर जिंदा नहीं रहोगी और ये तुमने देख ही लिया है कि तुम हर वक्त और हर जगह मेरे रहमो करम पर हो। ततारिया कुछ ना बोली, वो अपना निचला होंठ चबा रही थी। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? हमीद ने तशवीश कुछ लहजे में पूछा। हम भी इत्मीनान और आसाइश के साथ जिंदगी बसर करना चाहते हैं, उसने कहा। तुम लोग फ्रॉड करके करोड़ों रुपए सालाना कमाते हो, फिर हमीद ने झल्लाए हुए लहजे में सवाल किया। जाहिर है कि इसमें हमारा हिस्सा भी होना चाहिए, इसने लापरवाही से कहा। एक कोड़ी भी नहीं मिलेगी, अच्छी बात है तो मैं दोनों को यही खत्म किए देता हूँ। थ्रीसिया का साथी गुराया, ठहरो। ततारिया हाथ उठाकर बोली, मैं इस पर गौर कर रही हूँ। कब तक गौर करती रहोगी? तुम कल 6 बजे तक की मोहलत दे चुके हो। हाँ मैं अपने कॉल से फिरूंगा नहीं, 6:05 ना हो जाए। ठीक 6 बजे पूरी रकम लेकर बुरी पहाड़ियों के करीब पहुंचो, मगर तुम्हें तनहा होना चाहिए। तुम तनहा आओगी, करेंसी असली हो, अगर एक नोट भी जेली निकला तो बर्बाद कर दी जाओगी, समझी? तुम पागल हो गई हो, ततारिया, हमीद बोला। अगर इन लोगों ने एक बार भी तुमसे कोई रकम वसूल कर ली तो तुम्हें सारी जिंदगी सर पर हाथ रखकर रोना पड़ेगा। वो शायद अभी कुछ और कहता लेकिन अचानक थ्रीसिया के साथी ने इस पर फायर कर दिया और ततारिया की चीख सन्नाटे में दूर तक फैलती चली गई। दोहरी चोट, हमीद जमीन पर चट पड़ा था और ततारिया की चीख किसी रेलवे इंजन की सीटी की तरह इसके कानों में गूंज रही थी। इसकी फुल हेड कई गज के फासले पर पड़ी, शायद इसका मजाक उड़ा रही थी। हमीद ने अपनी पेशानी टोली लेकिन उसे सुराख नहीं महसूस हुआ। अलबत्ता पथरीली जमीन पर गिरने की वजह से इसका मगज हलता हुआ सा मालूम हो रहा था। गोली गालिबन फुल हेड के ऊपरी हिस्से पर पड़ी थी। ततारिया इसकी तरफ झपटी लेकिन थ्रीसिया के साथी ने इसे डांट दिया, ठहरो। ततारिया रुक गई, हमें चुपचाप पड़ा रहा। उसे यकीन था कि फुल हेड वाला खतरनाक मजाक सारी दुनिया में फरीदी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसने चुपचाप आंखें बंद कर ली। आंखें खुली रखने की सूरत में कुछ न कुछ इजारे शिजात करना ही पड़ता और फिर वैसे भी इसे ततारिया
या इस नामकूल तंजीम से दिलचस्पी ही क्या हो सकती थी। तुम अभी फैसला करो, थ्रीसिया के साथी ने गरज कर कहा। हाँ या नहीं, 7 लाख पहुँच जाएंगे भूरी पहाड़ियों के करीब। हाँ, ततारी के हलक से फटी फटी सी आवाज निकली। तुम तन्हा आओगी? हाँ। अगर इसमें फर्क पड़ा तो? नहीं पड़ेगा। अच्छी बात है, तुम खूब समझती हो कि मैं हर जगह तुम्हें निहायत आसानी से मार डालूंगा। आज तक दुनिया की कोई चीज अल्फांस की राह में रुकावट नहीं बनी। वो रिवॉल्वर का रुख ततारिया की तरफ किए हुए अपनी कार में जा बैठा और दूसरे ही लम्हे में कार फराटे भरने लगी। वैसे वो जाते वक्त हमीद का रिवॉल्वर ततारिया की तरफ छाल गया था और वो एक तरफ नहार जाती तो वो इसके चेहरे ही पर पड़ा होता। ततारिया हमीद की तरफ मतवजो हो गई, जो अब भी इसी तरह आंखें बंद किए पड़ा था। अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद कि वो जख्मी नहीं हुआ है, ततारिया ने एक तवील सांस ली, इत्मीनान की सांस, और फिर उसे होश में लाने की तदबीरें करने लगी। दफातन हमीद ने महसूस किया कि अगर ये तदबीरें कुछ देर और जारी रहीं तो इसे सारी जिंदगी सर पर हाथ रखकर होना पड़ेगा, और वो अपनी पहली फुर्सत में होश में आया। तुम बड़े कमजोर दिल के निकले, ततारिया हाँपती हुई मुस्कुराई। ओ, हमीद उठकर चारों तरफ देखने लगा, फिर सर का पिछला हिस्सा फैलाता हुआ बोला, मेरी फुर्ती की दाद ना दोगी कि मैं किस सफाई से बच गया। इसने सर का निशाना लिया था। ततारिया ने उठकर उसकी फुल्ट हेड उठाई, जिसके ऊपरी हिस्से में एक सुराख नजर आ रहा था। ये तुम्हारी फुल्ट हेड बहुत वजनी है, ततारिया ने इसे हाथ में तोलते हुए कहा। अगर वजनी ना होती, हमीद ने जवाब दिया, तो ये सुराख यहाँ होता। उसने अपने सर पर उंगली से इशारा किया। बुलेट प्रूफ? हाँ, एक बुलेट प्रूफ कवर इसके अस्तर के नीचे मौजूद है। तुम बहुत चालाक हो, चलो वो अपना रिवॉल्वर उठाओ। इससे अजीब आदमी आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा। ओह, वो कितना दिलेर और बेबाक है। तुम तंजीम के एक दुश्मन की शान में कसीदा खानी कर रही हो, हमीद बुरा मुंह बनाकर बोला। ये मेरा निजी मामला है, क्या तुम होश में हो या नहीं, हमीद ने झिझलाए हुए लहजे में कहा। मैं कतई होश में हूँ, ततारिया ने संजीदगी से जवाब दिया। तंजीम के लिए मेरी खिदमात वकफ है, लेकिन क्या कुछ नहीं, ततारिया गुस्सीले अंदाज में बोली। तुम्हें इससे कोई सरोकार ना होना चाहिए। अच्छी बात है, मैं तुम्हें देख लूंगा, हमीद ने जमीन से अपना रिवॉल्वर उठाते हुए कहा। मैं ततारिया हूँ, समझे, मैं सुहेल हूँ, जिसे डॉक्टर सलमान तक कांपता है। तुम दोनों गधे हो, हमीद ने जवाब में इसके गाल पर थप्पड़ तसीर कर दिया और वो भी भूखी शेरनी की तरह इस पर झपट पड़ी। हमीद ने दूसरा हाथ रसीद किया और ततारिया ने इसका दाना शाना मुंह में भर लिया। हमीद को इसके दांत गोश्त में उतरते महसूस हुए और उसने इसकी हंसली की हड्डी में अपनी 4 उंगलियां डालकर इतनी कुवत सर्व कर दी कि ततारिया को चीखते हुए इसका शाना छोड़ देना पड़ा। दूसरे ही लम्हे में हमीद उछलकर पीछे हट चुका था। शाइन चमड़े का चाबक खिला में चकराया। ततारिया जहाँ थी वहीं रुक गई। मैं यही तुम्हारी खाल गिरा दूंगा, ततारिया कार की तरफ भागी। हमीद पीछे से शड़प शड़प चाबक बरसाता रहा। कार के करीब पहुंचकर वो गिरते गिरते बची। अब वो फिर किसी मजलूम की तरह चीखने कराहने लगी थी, लेकिन शायद वो इस फिक्र में थी कि हमीद को यहीं छोड़कर निकल जाए। तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, हमीद ने इसके बाल पकड़कर खींचते हुए कहा। वो चीखकर इस पर आ रही नहीं नहीं वो कराही, हमीद ने इसके मुंह में उंगलियां ठोंसने की कोशिश करते हुए कहा। कानों तक फाड़ दूंगा, तुम्हारी बात है, मैं हार गई, छोड़ो खुदा के लिए। हमीद ने बड़ी बेदर्दी से इसे कार पर धकील दिया। तुम बड़े जालिम हो, वो अपना मुंह दबाकर जमीन पर बैठ गई। शायद जबान दांतों के दरमियान आकर कट गई थी। फिर वो तकरीबन 2 मिनट तक खून छूकती रही। इसकी जबान सचमुच जख्मी हो गई थी, लेकिन न जाने क्यों हमीद के दिल में इसके लिए रहम का शायबा भी नहीं था। ताकत की तंजीम से ताल्लुक रखने वाली चींटी को भी वो मसले बगैर नहीं रह सकता था। यहाँ तो इसे अच्छा खासा बहाना हाथ आया था। ततारिया के लिए इजार रसानी की तजवीज खुद डॉक्टर सलमान ही ने पेश की थी। अगर ततारिया फिल हकीकत मसाकिट थी तो सारी दुनिया में इससे बेहतर क्लासिकल मिसाल मिलनी दुश्वार थी। हमीद ने उसे खींच खांच कर कार में बिठाया और खुद ड्राइव करने लगा। अब वो फिर रामगढ़ की तरफ वापस जा रहे थे। अब मैं कभी तुम्हारी जबान से अल्फांसे की तारीफ ना सुनूं, उसने गुस्सीले लहजे में कहा। ततारिया कुछ ना बोली। अब वो इस अंदाज में मजे ले लेकर होले होले कराह रही थी, जैसे कोई इसका बदन दबा रहा हो। फिर दफातन वो खामोश होकर इस तरह कांपने लगी जैसे सर्दी लग रही हो। हमीद कुछ बोले बगैर स्टेयर करता रहा। फिर वो इस तरह साकत हो गई जैसे मर रही हो। हमीद ने कनखियों से इसकी तरफ देखा। इसकी आंखें बंद थी और वे गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वो उसे मजीद छेड़े बगैर ड्राइव करता रहा। कुछ देर बाद ततारिया खराटे लेने लगी। उसे गहरी नींद आ रही थी, वो बैठे बैठे सो रही थी। हमीद सोच रहा था कि वो रिदी ने इससे किसी किस्म का रब्ता क्यों नहीं कायम किया। हमीद के पास इसके लिए बतेरी इतलाआत थी, मगर ये भी जरूर नहीं था कि वो इसके लिए अहम ही होती। फरीदी की दुनिया ही अलग थी, इसके लिए अहम तरीन बातें भी कोई वक्त नहीं रखती थी और अक्सर गैर अहम किस्म की बातें इसके लिए निशाने मंजिल बन जाती थी। बहरहाल ये फरीदी का मामला था और फरीदी के मामलात में किसी की भी दखल अंदाजी इसके लिए बायस शर्मिंदगी ही होती थी। वो अपनी मर्जी का मालिक था, जो कुछ भी चाहता कर गुजरता। कार सुनसान सड़क पर दौड़ती रही और हमीद फरीदी के मुतालिक सोचता रहा। ततारिया अब भी खराटे ले रही थी। इसके जहन ने फरीदी से ततारिया और ततारिया से सहरा पर जस लगाई। आखिर डॉक्टर सलमान साहरा की खबर क्यों नहीं लेता? वो एक माहिर नफ्सियात है। जाहिर है कि इसे कुदरती तौर पर नफ्सियाती केसों से दिलचस्पी होनी चाहिए। तजुर्बात में भी इजाफा करने के लिए साहरा का केस अपनी मिसाल आप है, मगर न जाने क्यों डॉक्टर सलमान को इसकी कतई परवाह नहीं थी। रामगढ़ पहुंचकर हमीद ने कार का रुख ततारिया की कोठी की समत कर दिया। वो अब भी सो रही थी गहरी नींद, बिल्कुल उसी बच्चे की तरह जो रोते रोते निडाल होकर सो गया हो। इस वक्त इसके चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी। खदोखाल का तीखापन न जाने कहां गायब हो गया था। सख्तगीर तबीयत की गम्माज पेशानी की सलवटें भी मालूम हो गई थी और हमीद बार बार उसे हैरत से देख रहा था। कोठी की कंपाउंड में दाखिल होते ही हमीद ने उसे झिझोड़ा और वो बौखलाकर जाग पड़ी। क्या है, क्या हुआ? हमीद ने कार रोककर पोर्च की तरफ इशारा किया। ओहो, वो जमाही लेकर मुस्कुराई। मैं सो गई थी, फिर चारों तरफ देखती हुई कार से उतर गई और हमीद से बोली, अब तुम कहां जाओगे? फिलहाल तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता हूं, हमीद ने जवाब दिया। ओह, वो पेशानी पर बल डालकर रह गई। चंद लम्हे हमीद को घूरती रही, फिर बोली, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारा मालिक तुम गद्दे हो। इसी लफ्ज पर कुछ पहले फिर हमीद चुपचाप कार से उतरा। चंद लम्हे तक ततारिया को घूरता रहा, फिर अजीब अंदाज में शानों को जुमल देकर फाटक की तरफ मुड़ गया। फाटक से निकलकर कुछ दूर चलने के बाद एक टैक्सी मिल गई और डॉक्टर सलमान की कोठी की तरफ रवाना हो गया। वो सोच रहा था कि साहिरा शाम की चाय के लिए इसकी मुंतजिर होगी। साहिरा की मौजूदगी में वो भूल जाता था कि डॉक्टर सलमान की कोठी में इसके कयाम का मकसद क्या है। वो उसे अपनी मासूम मगर पुरसरार गुफ्तगू में उलझा लेती, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा भी महसूस होने लगता है जैसे साहिरा इसे बेवकूफ बना रही हो। वो डॉक्टर सलमान से कभी साहिरा के मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं करता था। इसका ख्याल था कि मुमकिन है डॉक्टर सलमान इन दोनों का मिल बैठना पसंद ना करे। कोठी पहुंचकर जैसे ही इसने अपने कमरे में कदम रखा, उसे दोबारा बाहर निकल आना पड़ा। शायद वो किसी दूसरे कमरे में चला गया था, लेकिन कॉरिडोर में खड़े होकर चंद लम्हे गौर करने के बाद उसे ये ख्याल तर्क कर देना पड़ा कि इससे गलती हुई थी। कमरा 100% वही था जिसमें इसका कयाम था, मगर इसकी हियत कैसे बदल गई थी। आज सुबह तक ना तो इसकी दीवारों पर फ्रेम में लगी हुई तस्वीरें थी और न किताबों की वो शेल्फ जो नीचे से ऊपर तक बेहतरीन किस्म की गेटअप वाली किताबों से भरी हुई थी। पहले वहां कोई अलमारी भी नहीं थी। बहरहाल वहां उसे बेहतरीन ऐसी तब्दीलियां नजर आई जो इसके लिए हैरत अंगेज थी। वो फिर कमरे में घुसा और साथ ही उसे साहिरा का कहकहा सुनाई दिया। वो चौंक कर मुड़ा। साहिरा सामने वाले कमरे के दरवाजे से सर निकाले हंस रही थी। क्यों, उसने पूछा, क्या ये सब कुछ आपको नापसंद है? तो ये तुम हो? नहीं, बताइए, क्या अब आपको ये कमरा बुरा लग रहा है? तुमने डॉक्टर से पूछकर ये सारी तब्दीलियां की हैं? हमीद ने पूछा। नहीं तो, मालूम होता है कि तुम मुझे भी इन आदमियों की तरह निकलवाओगी जो तुम्हारी आंखों, होंठों और जुल्फों की बातें किया करते थे। साहिरा पहले तो हंसी, लेकिन फिर यकबयक संजीदा हो गई। इसके चेहरे से एक गम आलूद सी कसलमंदी का इजहार होने लगा और आंखें किसी खौफजदा खरगोश की आंखों से मुशाबे नजर आने लगी थी। फिर इसके होंठों में एक हल्की सी कपकपाहट दिखाई दी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। क्यों, हमीद आहिस्ता से बोला, क्या तुम डर गई हो? जी, वो चौंक पड़ी। क्या तुम डर गई हो? किस से डरूंगी? उसने इस अंदाज में पूछा जैसे इस मौजू पर पहले कोई गुफ्तगु ही ना हुई हो। डॉक्टर से मैं नहीं समझी, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि तुमने इस कमरे की हियत क्यों बदल डाली? क्या आपको पसंद नहीं है? इसने मायूसाना अंदाज में पूछा। बहुत पसंद है, हमीद ने जवाब दिया। और क्या आपने अभी चाय ना पी होगी? हाँ, अभी नहीं पी। डॉक्टर कहाँ है? पता नहीं, वो सुबह से नहीं है। ओ अच्छा। दफातन हमीद ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और उसकी रूह कफस अंसरी से परवाज कर गई, क्योंकि आज वो अपने चेहरे की मुरम्मत किए बगैर ही कोठी में दाखिल हो गया था, यानी अब भी मेकअप में था। इसकी दानिश में सायरा इसकी दूसरी शख्सियत से नावाकिफ थी, लेकिन ये महसूस करके उसकी हैरत की इंतहा न रही कि सायरा ने इस पर हैरत का इजहार नहीं किया था। इसके दो ही मतलब हो सकते थे, या तो डॉक्टर सलमान उसे सब कुछ बताता रहता था, या फिर वो खुद ही इतनी चालाक थी कि हमीद को मेकअप में भी पहचान सकती थी। दोनों ही सूरतें गैर मामूली थीं। हमीद उसे गौर से देखता रहा। ओ, मैं चाय के लिए कह दूं, सायरा ने कहा और दूसरी तरफ मुड़ गई। ठहरो, हमीद हाथ उठाकर बोला। वो रुक गई और हमीद चंद लम्हे इसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? सायरा हंसने लगी, लेकिन जल्द ही संजीदगी अख्तियार करके बोली, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। यानी, अरे भाईजान का काम ही यही है, लोगों के दुश्मनों का पता लगाने के सिलसिले में उन्हें भेस भी बदलना पड़ता है। मैंने आपको परसों रात भी इसी भेस में देखा था जब आप भाईजान के साथ कहीं जा रहे थे, मगर आप इस भेस में भाईजान के छोटे भाई मालूम होते हैं। बड़ी मोटी सी बात थी, हमीद को इस सिलसिले में मुतहैर ना होना चाहिए था। जाहिर है कि इदारा रवाबित आमा का काम ही सराग रसानी था। हमीद फिर ख्यालात में खो गया और सायरा चली गई। फिर वो अपने कमरे में जाने ही वाला था कि कॉरिडोर के सिरे पर डॉक्टर सलमान दिखाई दिया जो बड़ी तेजी से इसकी तरफ आ रहा था। हमीद को देखकर इसने ठहरने का इशारा किया। तुम कहां से आ रहे हो कैप्टन? इसने पूछा।
تتاریہ کے ساتھ میں نے آج ایک دلچسپ دن گزارا ہے جس میں فلٹ کا یہ سوراخ بھی شامل ہے. امین نے فلٹ ہیڈ کی طرف اشارہ کیا. مجھے علم ہے, ڈاکٹر نے مضطربانہ انداز میں کہا, میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تتاریہ کو تم نے کہاں چھوڑا تھا؟ اس کی کوٹھی کے پاس باغ میں, حمید نے متحیرانہ انداز میں کہا. کیا وہاں اس کی لاش پائی گئی تھی؟ او نہیں, ڈاکٹر سلمان نے آہستہ سے سر کو جنبش دی. پھر کیا بات ہے, وہ لٹ گئی؟ کیا مطلب, ابھی اس کا فون آیا تھا, کوئی اس کی تجوری صاف کر لے گیا. اسی دوران میں جب وہ تمہارے ساتھ جھلموار کا سفر کر رہی تھی, تجوری سے اس کی انتہائی بیش قیمت جواہرات غائب ہیں اور ان کی جگہ ایک پرچہ ملا ہے جس پر تحریر تھا, جواہرات بطور ضمانت لے جائے جا رہے ہیں, 7 لاکھ کی وصولیابی پر واپس کر دیے جائیں گے. جواہرات کی قیمت کا اندازہ 15 لاکھ سے بھی زائد ہے. تتاریہ کو یہ تجوری کھلی ہوئی ملی تھی اور سب سے زیادہ حیرت انگیز بیان اس کی ملازمہ کا بیان ہے. وہ کہتی ہے کہ خود تتاریہ نے 20 منٹ قبل اسی کے سامنے تجوری کھولی تھی. او حمید متحیرانہ انداز میں بڑبڑایا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی دوسری عورت تتاریہ کی شکل میں ملازموں کو دھوکہ دے گئی. اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے, ڈاکٹر سلمان آہستہ سے بولا. تتاریہ اور دھماکہ. دوسرے دن شام کو حمید اور ڈاکٹر سلمان بھوری پہاڑیوں میں پھٹکتے پھر رہے تھے. حمید نے ڈاکٹر سلمان کو یقین دلایا تھا کہ تتاریہ 7 لاکھ روپے لے کر یہاں ضرور آئے گی. ویسے ڈاکٹر سلمان نے تتاریہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ جواہرات کو صبر کر لے اور مزید نقصان اٹھانے کے چکر میں نہ پڑے, کیونکہ اسے 7 لاکھ گنوانے کے بعد بھی جواہرات کی واپسی کی توقع نہیں تھی. تتاریہ نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اس کے مشورے پر عمل کرے گی, لیکن حمید کو یقین نہیں آیا تھا کیونکہ وہ اس آدمی الفانسے کی دلیری کی مداح تھی اور پھر حمید اس کے جنون سے بھی واقف تھا. وہ جانتا تھا کہ ایسی عورتیں مردوں کے معاملے میں کیسی ہوتی ہیں, دولت تو بڑی حقیر چیز ہے, وہ جان کی بھی پرواہ نہیں کرتی. بہرحال حمید نے ڈاکٹر سلمان کو اس کے خلاف ابھار دیا تھا اور پھر وہ ان لوگوں کی مرمت بھی کروانا چاہتا تھا. وہ جانتا تھا کہ ڈاکٹر سلمان کو یہ مہم زندگی بھر یاد رہے گی. یہ بھوری پہاڑیاں, ڈاکٹر سلمان چلتے چلتے رک کر بولا, پھر کچھ سوچنے لگا اور تھوڑی دیر بعد کہنے لگا اور یہ بھوری پہاڑیاں ڈاکٹر سلمان چلتے چلتے رک کر بولا پھر کچھ سوچنے لگا اور تھوڑی دیر بعد کہنے لگا یہاں اس طرح بھٹکنے سے کوئی فائدہ نہیں, میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں. حمید بڑبڑایا, مگر میری دانست میں الفانسے نے کسی جگہ کا تعین نہیں کیا تھا. پھر ہم یہاں 100% جھک مار رہے ہیں, ڈاکٹر سلمان ناخوشگوار لہجے میں بولا. مجھے یقین ہے تتاریہ کبھی نہ آئے گی. ہو سکتا ہے الفانسے نے جگہ کا تعین بعد میں کیا ہو, تتاریہ مجھے اطلاع ضرور دیتی, آپ ماہر نفسیات ہیں, ڈاکٹر حمید نے تنزیہ لہجے میں کہا. عورتوں کے متعلق آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے, یہ تنظیم کا معاملہ ہے کیپٹن. یہاں عورتوں اور مردوں کی حیثیت مشینوں سے زیادہ نہیں رہ جاتی, ان کے ذہنی جالے تنظیم کے کارناموں میں رکاوٹ نہیں بنتے, اور اگر بنتے ہیں تو. ڈاکٹر سلمان خاموش ہو گیا, لیکن حمید کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ ڈاکٹر سے پورے جملے کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے. یہ اس کی کوئی اندھی چال تھی بلکہ تنظیم ہی سے تعلق رکھنے والے ایک فرد نے اسے شطرنج کے مہرے کی طرح آگے بڑھایا تھا. ڈاکٹر ہمارے آدمی کہاں ہیں, اس نے پوچھا. آدمیوں کی پرواہ نہ کرو, ضرورت پڑنے پر وہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے, پہاڑیاں ان کی دیکھی بھالی ہوئی ہیں اور وہ اس وقت بھی ہم سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہوں گے. آہا, دفتر حمید چلتے چلتے رک گیا, اس کے ہاتھ میں دوربین تھی, وہ اسے آنکھوں تک اٹھا کر ایک طرف دیکھنے لگا. ڈاکٹر, اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا, میرے اندازے مشکل ہی سے غلط ثابت ہوتے ہیں. ڈاکٹر سلمان کی دوربین بھی اسی طرف اٹھ گئی, بہت دور سبز رنگ کا ایک دھبا سا متحرک نظر آ رہا تھا. پھر جیسے ہی وہ ایک دھندلے پس منظر میں آیا, اس کی تفاصیل واضح ہو گئی, وہ کوئی عورت تھی سبز رنگ کی ساڑی میں. مگر نہیں, حمید مضحکہ اڑانے والے انداز میں بولا, سبز رنگ کی ابا میں کوئی درویش بھی ہو سکتا ہے, کیوں ڈاکٹر؟ سلمان کچھ نہ بولا, اس کی دوربین بدستور اسی طرف اٹھی رہی. کچھ دیر بعد اس نے کہا, یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تتاریہ ہی ہوگی. ڈاکٹر, حمید ایک طویل سانس لے کر بولا, کبھی آپ نے کسی سے محبت بھی کی ہے؟ کیوں نہیں, دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا دل ہو جسے محبت سے خالی کہا جا سکے, وہ یقیناً ہزارہ خوبیاں رکھتی ہوگی. حمید نے مسکرا کر کہا, یقیناً. وہ کون ہے؟ طاقت. ڈاکٹر سلمان نے آنکھوں پر سے دوربین ہٹاتے ہوئے کہا, یعنی موجودہ حکمران؟ نہیں, وہ حکمران جس کی حکمرانی ازل سے ابد تک رہے گی. موجودہ حکمران ایک فنا ہو جانے والی عورت ہے, جس کی وہ نمائندگی کرتی ہے وہ غیر فانی ہے. آپ نے تو فلسفہ چھیڑ دیا, میں عورت کی بات کر رہا تھا. نہیں, عورت میری منزل نہیں ہے, دوسرا فریدی بول رہا ہے, حمید خوفزدہ انداز میں بڑبڑایا. ایسے آدمیوں سے کہیں چھٹکارا نہیں. کیا مطلب, اسے بھی عورتوں سے دلچسپی نہیں تھی, اس لیے وہ اتنا خطرناک ہے؟ ڈاکٹر سلمان نے کہا. ہے یا تھا؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ زندہ ہے؟ حمید نے حیرت سے کہا. یہ بات اس کے متعلق میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کی موت پر اس وقت تک مجھے یقین نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں. مگر وہاں اس زمین دوست دنیا میں
इस लड़की ने नाम नहीं याद आ रहा है। ओ रजनी रजनी, उसने बताया था कि फरीदी को गोली मार दी गई थी, मगर इसकी लाश नहीं मिल सकी, वो किसी पहाड़े नाले में गिरा था। हमीद ने कहा, गिरा होगा, डॉक्टर सलमान ने अपने निशानों को जुबच दी, अगर वो जिंदा भी है तो मुझे परवाह नहीं, मगर तुमने इस अल्फांसे के मुतालिक शुबा जाहिर किया था। मगर फिर सोचता हूँ कि इसे क्या पड़ी है जो इतना घटिया तरीका इख्तियार करेगा, क्या इसकी पुश्त पर कानून नहीं है? कानून तो मेरी पुश्त पर भी है, डॉक्टर सलमान मुस्कुराया, क्या मैं इस मुल्क का एक बाइज्जत शहरी नहीं हूँ? ओहो, अब देखिए, दफतर हमीद ने कहा, वो दूरबीन लगाए इसी से देख रहा था। डॉक्टर सलमान ने भी अपनी दूरबीन उठाई और हरिता से बोला, वो बिलाशुबा ततारिया है। ओह ये क्या, इसने कोई चीज नीचे फेंकी है? हमीद बोला, मेरा ख्याल है कि वो एक छोटा सा चर्मी हैंड बैग था। डॉक्टर सलमान ना बोला, फिर वो एक चट्टान की ओट में हो गए क्योंकि ततारिया अब इस तरफ आ रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और कर्बोजवार की पहाड़ियां झंझना उठी। ततारिया बेतहाशा दौड़ती हुई इसी तरफ आ रही थी, एक जगह लड़खड़ाकर वो गिरी भी, लेकिन फिर उठकर दौड़ने लगी। ये क्या हुआ, डॉक्टर सलमान आहिस्ता से बड़बड़ाया, ओ हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हमीद ने चट्टान की ओर से निकलना चाहा। ठहरो, सलमान ने इसका हाथ पकड़कर कहा, वो इधर ही आ रही है। ततारिया इस चट्टान के करीब पहुंचकर यूं ही दूसरी तरफ जाने के लिए मुड़ी। डॉक्टर सलमान ने इसका हाथ पकड़कर खींच लिया और फिर अगर दूसरा हाथ इसके मुंह पर ना जम गया होता तो ततारिया की बेख्याली में निकली हुई चीख दूर दूर तक फैल जाती। ओ हम, वो अपने मुंह पर से इसका हाथ उठाकर हांफती हुई बोली, टाइम बम, ठहरो, दम ले लो। सलमान इसका थपथपाकर बोला, मैंने सूटकेस में नोटों की बजाय टाइम बम रखा था। वो बदस्तूर हाँपती रही। बहुत उम्दा, डॉक्टर सलमान हमीद की तरफ देखकर मुस्कुराया, मुझे तुम्हारी जहानत से यही उम्मीद थी। क्या वो नीचे मौजूद था? मौजूद था, चलो ठीक है, मगर तुम यहाँ कैसे? मुझे यकीन था कि तुम मेरे मशवरे पर अमल ना करोगी। डॉक्टर सलमान मुस्कुराया। ततारिया हमीद की तरफ देखने लगी जो उसे घूर रहा था। तुम गिरी थी, चोट तो नहीं आई? हमीद ने पूछा, लेकिन ततारिया इसकी बात का जवाब दिए बगैर फिर डॉक्टर सलमान की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। ठीक उसी वक्त उन्होंने शोर सुना, फिर फायरों की आवाजें भी आईं। डॉक्टर सलमान ने हमीद की तरफ देखा, शायद टकराव हो गया है, हमीद पर बढ़ाया, लेकिन दूसरे ही लम्हे में रेट टेट की आवाजों पर डॉक्टर सलमान बुरी तरह बौखला गया। ये तो टामी गन की आवाज है, इसने कहा और आवाज की तरफ बढ़ता हुआ बोला, मेरे किसी भी आदमी के पास टामी गन नहीं थी। ठहरिए, जल्दी ना कीजिए, हमीद ने इसका बाजू पकड़ते हुए कहा, हो सकता है इनमें से कोई ततारिया ही की तरह अकलमंद रहा हो, यानी हमारी नादानिजगी में इसके पास टामी गन भी रही हो। नहीं, मैं जानता हूँ, डॉक्टर सलमान ने बाजू छुड़ाते हुए कहा। वो आवाज की सिम्त दौड़ रहा था, मजबूरन हमीद को भी दौड़ना पड़ा, लेकिन डॉक्टर सलमान ने मुड़कर कहा, तुम वहीं ठहरो ततारिया के पास। हाँ, हमीद ततारिया के पास पहुंचकर बोला, तुम इस वक्त बहुत अच्छी लग रही हो, मुझे अपनी मादरी जबान में एक गीत सुनाओ। सुनाऊंगी, ततारिया दांत पीसकर बोली, जरा इस हंगामे को इस तरफ आ जाने दो। हाँ हाँ, खैर कोई बात नहीं, मगर इस सूटकेस में टाइम बम नहीं था, ना रहा होगा, ततारिया ने लापरवाही से कहा। तुम्हें मालूम था कि हम लोग यहाँ जरूर आएंगे, फिर इसके बावजूद भी तुम 7 लाख लेकर चली आई, और फिर वो 7 लाख एक धमाके के साथ फट गए। ततारिया हंस पड़ी, फायरों की आवाजें अभी तक आ रही थी। इन आवाजों में ततारिया का कहकहा बड़ा अजीब मालूम हुआ। क्या अल्फांसे ने पिछली रात फोन पर तुमसे गुफ्तगू नहीं की थी? हमीद ने अंधेरे में तीर फेंका, हुई थी फिर तुमसे मतलब? इसने तुम्हें इस मकाम का पता दिया था, लेकिन तुम एहतियातन अपने साथ एक दस्ती बम लेती आई थी, क्यों? मैं क्या गलत कह रहा हूँ? ततारिया के चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई, मगर हमीद ने जल्दी से कहा, तुम इसकी परवाह न करो, ये बात सिर्फ मुझ तक महदूद रहेगी, दिल से मजबूर हूँ। ततारिया तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं सोचता हूँ अगर डॉक्टर सलमान ने मार डाला तो फिर मैं चाबक किस पर बरसाऊंगा, कौन है जो मेरे हाथों पीटना पसंद करेगी? ततारिया मैंने तुम्हें दस्ती बम फेंकते देखा था, डॉक्टर नहीं देख पाया, तुमने हमें देख लेने के बाद ही दस्ती बम फेंका था और दौड़ने लगी थी, मगर डार्लिंग मेरी जबान हमेशा बंद रहेगी, क्या मैं तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर सकता हूँ? मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। दफ्तर हमीद को डॉक्टर सलमान नजर आया जो दौड़ता हुआ इसी तरफ आ रहा था और इसका बायां बाजू सुरख नजर आ रहा था, शायद उसके गोली लगी थी। अपना रिवॉल्वर फेंको, उसने चीख कर कहा, मेरा रिवॉल्वर गिर गया। हमीद ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर इसकी तरफ उछाल दिया और वो उसे हाथों में रोक कर फरखड़ में उतर गया। पनागा। ततारिया डॉक्टर सलमान को दौड़ते देखती रही, फिर इसने हमीद की तरफ मुड़कर कहा, यह बहुत बड़ी हिमाकत है, अब हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए, वरना सरहदी पुलिस चौकी यहाँ से सिर्फ 1 मील के फासले पर है और फायरों की आवाजें दूर दूर तक फैल रही होंगी। मैं डॉक्टर सलमान को यहाँ नहीं छोड़ सकता, तुम जा सकती हो, मगर नहीं, तुम भी नहीं जा सकती। डॉक्टर सलमान ने मुझसे सिर्फ ये कहा था कि तुम्हारे पास ठहरूं, मैं तुम्हारे पास तो ठहरना ही नहीं चाहती। ततारिया बुरा समूह बनाकर बोली, हाँ मेरा जिस्म गोलियों से छलनी हो जाए, क्यों मैं तुम्हें खा जाऊंगा? नहीं, तुम मुझ पर बेसरोपा और बेबुनियाद इल्जाम रखते हो।
मेरा ख्याल है कि मेरा कोई इल्जाम बेबुनियाद नहीं था। हमीद उसे घूरता हुआ बोला, तुम इतनी अहमक नहीं हो कि इससे अपने बेशकीमत जवाहरात उजूल के बगैर इसे डायन बम का निशाना बना दो। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं होती, मुझे अंदाजा नहीं कि मेरे पास कितनी दौलत है, मैंने कभी मालूम करने की कोशिश ही नहीं की और वो जवाहरात तो मेरी नजरों में कोई वक्त ही नहीं रखते। मैं तो अल्फान से या इस कुतिया थ्रीसिया से अपनी तोहिन का बदला लेना चाहती हूँ। चलो खत्म करो, मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं, हमीद ने उकताए हुए लहजे में कहा। अगर तुम जैसी हजारों औरतें भी तंजीम से गद्दारी करे तो तंजीम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर तुमने बकवास शुरू कर दी, क्या मैं तंजीम से गद्दारी कर सकती हूँ? मैं जो गर्दन तक जराइम में फंसी हुई हूँ। जराइम, हमीद ने हैरत से दोहराया, ये लफ्ज भी गद्दाराना है। गोया तंजीम जराइम की मुर्तकिब हो रही है। तंजीम से बाहर रहकर तुम ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकती हो। तुम बातों को बढ़ाया ना करो तो तारी झंझल आ गई। इस मुल्क की पुलिस का नुकता नजर क्या होगा? क्या इसे तंजीम से हमदर्दी हो सकती है? एक दिन होकर रहेगी, हमीद ने सीना तानकर कहा। बस बस, सतारिया हाथ उठाकर बोली, मैं किसी किस्म के बहस में पढ़ना नहीं चाहती। दफअतन डॉक्टर सलमान फिर दिखाई दिया, वो उन्हें अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। हमीद ने ये महसूस किया कि अब वायरों की आवाजों से फिजा में पहला सा इंतजार बाकी नहीं रहा। वो दोनों डॉक्टर सलमान की तरफ बढ़े। सरहदी पुलिस, डॉक्टर सलमान ने आहिस्ता से कहा, उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ नशे में उतर गया। इसके बाएं हाथ की उंगलियों से खून टपक रहा था। वो चलते रहे। ततारिया जैसी भारी भरकम औरत के लिए ऐसे पहाड़ी मकाम पर पैदल चलना जुए शीर लाने से कम ना होना चाहिए था, मगर हमीद महसूस कर रहा था कि इसके पैरों में डगमगाहट के बजाय किसी हल्के जिस्म वाले के पैरों की सी चुस्ती थी। और कुछ देर पहले इसने इसे उन्हें नाहमवार चट्टानों पर दौड़ते भी देखा था। यकीनन ये एक हैरत अंगेज बात थी। इस वक्त भी वो थकन का शिकवा किए बगैर इसी रफ्तार से चल रही थी जिस रफ्तार से वो दोनों चल रहे थे। हमारे आदमी कहाँ है? हमीद ने डॉक्टर सलमान से पूछा। ओ, इनकी परवाह न करो, उन्हें कोई ना पा सकेगा। वो एक तंग से दरे में दाखिल हो रहे थे और अब आहिस्ता आहिस्ता दिन की रोशनी गायब होती जा रही थी। डॉक्टर सलमान खामोश था, लेकिन उसके पैर बराबर उठ रहे थे। जख्मी बाजू इसमें हारिज नहीं हुआ था। ये और बात है कि वो अपने दाने हाथ से इसे दबाए रहा हो। इसके चेहरे पर अब वो पहली सी ताजगी भी नहीं थी। होंठ खुशक और आंखें वीरान वीरान सी नजर आने लगी थी। क्या मैं आपको सहारा दूं डॉक्टर? अभी ने कहा। नहीं, डॉक्टर सलमान के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट नजर आई। इसकी जरूरत नहीं है, मैं इतना कमजोर भी नहीं हूँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। हमें खामोशी से रास्ता तय करना चाहिए, डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा। हम जल्द ही किसी जगह बैठकर गुफ्तगू करेंगे। अब वो फिर एक ढलान पर उतर रहे थे और यहाँ दरार कुछ कशादा हो गई थी, वरना धुंधलका तारीकी में तब्दील हो गया था और नतीजे के तौर पर उन्हें ठोकरें खानी पड़ती। ततारिया हमीद से लगी हुई चल रही थी। डॉक्टर सलमान आगे था। चलते चलते दफ़तर वो गहरी तारीकी में पहुंच गया और डॉक्टर सलमान ने जेब से दिया सलाई निकालकर जलाई और उसे सर से ऊंचा उठाते हुए बोला, वहीं रुक जाओ। हमीद और ततारिया रुक गए। दिया सलाई बुझ चुकी थी। उन्होंने दोबारा अंधेरे में डॉक्टर की आवाज़ सुनी जो कह रहा था, वहीं ठहरो जब तक के मैं वापस ना आ जाऊं। फिर ऐसी आवाजें आईं जैसे डॉक्टर बहुत एहतियात से चल रहा हो, लेकिन इसने एक बार लंबी छलांग जरूर लगाई थी। हमीद को यकीन था फिर सन्नाटा तारी हो गया और हमीद ततारी की चलती हुई सांसों की आवाजें सुनता रहा। तकरीबन 5 मिनट तक वो इसी तरह खड़े रहे। फिर अचानक कुछ फासले पर मध्यम सी रोशनी दिखाई दी। दूसरे ही लम्हे में डॉक्टर इनसे कुछ फासले पर हाथ में एक मोमी शमा लिए खड़ा था। उसने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा, आ जाओ नीचे देखते हुए, यहाँ एक 3 फुट चौड़ी दरार है। इसने मोमी शमा को नीचे झुकाया और कहा, ये रही, लेकिन शायद ततारिया इसे ना फैलांग सके। ओ, ये कुछ भी नहीं है, तुम मुझे क्या समझते हो? अच्छा तो आओ। हमीद सोच रहा था कि आखिर ये मोमी शमा कहाँ से निकल पड़ी। वो दोनों आगे बढ़े और ततारिया ने दरार निहायत आसानी से पार कर ली। डॉक्टर सलमान उन्हें रास्ता दिखा रहा था। वो दाएं तरफ मुड़े और हमीद को ये देखकर हैरत हुई कि वो एक मुस्ततील तराशे हुए दरवाजे से गुजर रहा है। जैसे वो आगे बढ़ा, इसे अपनी पुश्त पर एक अजीब किस्म की आवाज सुनाई दी। वो चलते चलते रुक कर मुड़ा, डॉक्टर पीछे ही रह गया था। दरवाजा गायब था और डॉक्टर सलमान इसकी तरफ पड़ रहा था। वो एक चौकोर कमरे में थे जिसमें न खिड़कियां न दरवाजे। डॉक्टर ने चारशमे और रोशन कर दिया। अब यहाँ इतनी काफी रोशनी थी कि हमीद पूरे कमरे का जायजा ले सकता था। इसे यहाँ मुख्तलिफ किस्म का सामान नजर आया, 3 मेजें, 2 अलमारियां, 7 कुर्सियां और एक पलंग जिस पर जर्द रंग की चादर पड़ी हुई थी। अभी ने ततारिया की तरफ देखा, इसके चेहरे पर भी हैरत के आसार थे। ऐसा मालूम होता था जैसे वो भी पहली बार यहाँ आई हो। बैठो, डॉक्टर ने कुर्सियों की तरफ इशारा किया। फिर इनके बैठ जाने के बाद बोला, अब मुझे अपने जख्म को देखना चाहिए, लाइए मैं ड्रेसिंग करूँ। हमीद जल्दी से बोला, मगर फिर मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर कहने लगा, क्या यहाँ फर्स्ट एड का सामान मिल सकेगा? थर्ड एड तक सामान मिल सकता है। डॉक्टर सलमान ने अपने महसूस अंदाज में मुस्कुराने की कोशिश की। गोली बाजू को चीतती हुई दूसरी तरफ निकल गई थी, लेकिन हड्डी पर किसी किस्म की जर्ब नहीं आई थी। हमीद ने ड्रेसिंग करने में देर नहीं लगाई। शुक्रिया, डॉक्टर सलमान ने हमीद की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। आज का मौका अजीब था, मैं नहीं समझ सकता कि ततारिया ने बम किस पर फेंका था। खैर, कल के अखबार से इसका नतीजा जाहिर ही हो जाएगा, क्योंकि सरहदी पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई थी। वो लोग कितने थे? हमीद ने पूछा। ज्यादा से ज्यादा 3, जिन्होंने कम से कम 5 आदमियों को यकीनी तौर पर जख्मी किया है। हमारे आदमी कहाँ है? महफूज हैं, इनकी फिक्र मत करो, डॉक्टर सलमान उठता हुआ
खोला। इसने एक अलमारी खोलकर इसमें से शैंपेन की बोतल और दो गिलास निकाले और उन्हें मेज पर रखता हुआ ततारी की तरफ मुड़ा, जो उसे गौर से देख रही थी। सिर्फ हम तीन आदमी इस पनागा से वाकिफ हैं, इसने ततारी की आंखों में देखते हुए कहा। मैं इस जुमले का मतलब नहीं समझी। ओ, कोई खास बात नहीं, क्या तुम दो गिलास तैयार नहीं कर सकती? नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन शराब नहीं पीऊंगी। मत पियो, डॉक्टर सलमान ने लापरवाही से कहा और खुद उठकर गिलास में शराब उंडेलने लगा। हमीद को इस वक्त इसकी आंखें अच्छी नहीं लग रही थी। इसके होंठों पर मुस्कुराहट जरूर थी, लेकिन आंखें इस मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रही थी। वो गिलास हाथ में लिए हुए तातारिया के सामने आ बैठा, फिर हमीद की तरफ देखकर बोला, क्या तुम इतनी दौड़ धूप के बाद भी एक गिलास लेना पसंद ना करोगे? मैं तो हमेशा खाली शराब पीता हूँ। शुक्रिया, हमीद मुस्कुराया। मैं जरूरी नहीं समझता कि खामखा एक बुरी आदत का इजाफा कर लूं। तुम बहुत बासूल आदमी हो, मैं तुम्हें बेहद पसंद करने लगा हूं। दूसरी बार शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर सलमान ततारी की आंखों में देखता हुआ शराब की हल्की हल्की चुटकियां लेता रहा, फिर यकबयक गिलास को एक तरफ फर्श पर रखकर सीधा बैठ गया। वो और ततारिया एक दूसरे को घूर रहे थे, पलके झपकाए बगैर। कंदीलों की रोशनी इनके चेहरों पर पड़ रही थी। इस संदूक नुमा कमरे में ये रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे किसी ताबूत के गिर्द मोमी कंदीलें रोशन की गई हों। और फिर इस माहौल में वो दोनों ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इनकी आंखें पत्थर की हों। दवअतन डॉक्टर सलमान किसी साहब की तरफ फुफकारा, ततारिया तुम सो रही हो? हाँ, मुझे नींद आ रही है, ततारिया ने भराई हुई आवाज में कहा। अंदाज बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कहा हो, हाँ डूब रही हूँ। तुम सो रही हो, गहरी नींद? हाँ, ततारिया की पलकें आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगी। तुम सो गई ततारिया? डॉक्टर सलमान ने फिर इसी अंदाज में कहा। ततारिया इससे ज्यादा कुछ न कह सकी, इसकी आंखें बंद हो चुकी थी, गर्दन एक तरफ ढलक गई, वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। दफतन डॉक्टर सलमान इस तरह चौंका जैसे अभी तक खुद भी सोता रहा हो। उसने दो तीन बार पलकें झपकाई, आंखों को मसलता रहा, फिर फर्श से गिलास उठाकर दो तीन लंबे लंबे घूंट लिए और हमीद की तरफ देखकर बोला, तुम्हें हैरत होगी, कतई नहीं। हमीद भी जवाबन मुस्कुराया, कभी मुझे भी हिप्नोटिज्म का हफ्त रह चुका है, मगर आप इसके माहिर मालूम होते हैं, इतनी जल्दी आसानी से इसे ट्रांस में ले आए। हाँ, इसकी जरूरत थी। ओह, समझा, शायद आपका भी ये ख्याल है कि इस सूटकेस में 7 लाख के नोट ही थे। तुम बहुत जहीन आदमी हो कैप्टन। हाँ, मेरा यही ख्याल है। कबल इससे कि आप इससे मालूम हासिल करें, मैं ही आपको कुछ बता दूं। बताओ, डॉक्टर सलमान ने कहा और गिलास खाली कर दिया। वो धमाका हेड बम का था जो ततारिया ने हमें देख लेने के बाद नीचे फेंका था। बहुत अच्छे, तो मेरा ख्याल गलत नहीं था, तुम्हारी निगाह बहुत तेज है। ये हकीकत है कि तुम्हारे इजाफे से तंजीम के हाथ बहुत मजबूत हो गए हैं, इसने ततारिया की तरफ इशारा करके कहा। अगर ये जाया हो जाए तो तंजीम खसारे में नहीं रहेगी। वो खामोश होकर ततारिया को घूरता रहा, फिर बोला, ये अपनी ख्वाहिशात की गुलाम है, लिहाजा अल्फांसो जैसे लोग इसकी जिंसियत को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकते हैं। आहा कैप्टन, अगर हमारा ख्याल सही निकला तो ततारिया एक अहम मकसद के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगी। गालबन तुम समझ गए होगे। मैं समझ गया, आप इसके जरिए अल्फांसो पर हाथ डालेंगे। बिल्कुल ठीक, अब कुछ देर के लिए खामोश हो जाओ, मैं ततारिया को देखूंगा। वो सिलसिले में खामोश रहा, फिर सोई हुई ततारिया को मुखातिब करके बोला, ततारिया तुम मेरे सवाल का जवाब दो। अच्छा, ततारिया के होंठ हबीब से हिले और ऐसा मालूम हुआ जैसे इनसे निकली हुई आवाज बहुत दूर से आई हो। तुमने जो सूटकेस नीचे फेंका था इसमें क्या था? 7 लाख रुपयों की नोट। फिर तुमने हमें देखकर हैंडबम फेंका था? मैंने फेंका था अल्फांसो के लिए। हाँ, अल्फांसो के लिए तुम्हें मना किया गया था। मना किया गया था, मगर अल्फांसो मेरा महबूब है। जगह कतायुन कैसे हुआ था? अल्फांसो ने फोन पर मुझसे गुफ्तगू की थी। क्या तुम इसे अपने जवाहरात वापस लोगी? नहीं, अब मैं तुमसे कोई जवाब नहीं चाहता। तुम मेरी किसी बात का जवाब ना दोगी। डॉक्टर सलमान ने सलम में खामोश रहकर ततारिया को मुखातिब किया। ततारिया, लेकिन इस बार ततारिया ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर सलमान की तरह तुम इससे मोहब्बत करोगी, इससे मिलोगी, चाहोगी वो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाए, लेकिन ततारिया तुम इसे अपने हाथों से जहर दोगी। तुम इसे जहर दोगी। दफतन डॉक्टर सलमान का चेहरा सुर्ख हो गया और आंखें हल्कों से उबलती हुई मालूम होने लगी।
मौजूदा समय इसी के साथ ये पाठ अपने अख्ताम को पहुँचा।